बाद वो पर्सनली हो रहा था, तब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ तो है, पर तब भी मैंने ऐसा मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है, मैं थक गया हूँ उसकी वजह से, शायद मुझे थकावट की वजह से वो हो रहा है। दूसरे दिन मैं आया वापस सोया, तब मुझे खास याद है कि 12:30 बजे थे, क्योंकि सोए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ तो नींद कच्ची रहती है अपनी, बहुत अच्छी नींद रहती है। वो पूरा मेरे यहाँ गर्दन पे और मेरे चेहरे पे पूरा हाथ घुमा रहा है, ऐसा पक्का फील होने लगा मुझे। मैं उठा, देखा पूरे घर में लाइट करके, मुझे पहले लगा कि शायद कोई चोर है कि या क्या चीज है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कर कौन रहा है मेरे साथ। मैं साक्षात देख रहा था कि ये कोई जानवर जैसा कोई बैठा हुआ है, और यहाँ तक उसकी हंसी थी, जैसे कि वो जोकर वाली की हंसी नहीं आती, यहाँ तक होती हुई, यहाँ तक उसका जबड़ा खुला हुआ था और इतने लंबे लंबे दांत हो गए उसके, और वो मेरे सामने देख के हंस रहा है पूरा। उसने जब वो उस पकड़ी गई ना, तब उसने शायद ऐसा बोला था कि मुझे ये सब शैतान ने करवाया, जैसे कि वो मूवी आई थी ना डेविल मेड मी डू इट, तो उसने भी वैसा ही बोला कि डेविल ने मुझे कहा था कि ये चीज करो तुम, तो मेरे उस लिए मार दिया, मैंने नहीं मारा है।
So yo, hello, this is Dishank Dimble. Welcome back to the podcast and Ram Ram, guys. मैंने ये नया स्टार्ट कर दिया राम राम बोलने का, बट आज का पॉडकास्ट इज रियली रियली अमेजिंग बिकॉज आज हम लोग के साथ युवराज भाई आए हैं डायरेक्टली गुजरात से। सो इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था क्योंकि ये क्रिमिनल नीश के बहुत एंथुजियाज्म रखते हैं, और इनको हॉन्टेड, पैरानॉर्मल और क्रिमिनल साइड, जो डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, वो एक्सप्लोर करने में मजा आती है, बिकॉज ये एक टाइप के बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेटर ही बनना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेटर ही बनना चाहते हैं आजकल तो, मतलब ये ट्रेंड तो चल रहा है बट बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुली कर पाते। ये मुझे एक एक थियरी, एक एक स्टोरी अभी सुना रहे थे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो उनके साथ भी कुछ किस्से हो गए थे तो वो पहले हम लोग डिस्कवर करेंगे। तो युवराज भाई, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट किस्सा दैट यू हैव। आपके साथ क्या हुआ था? बिकॉज आपने मुझे कॉल पे भी बताया था कि ये मेरे साथ हुआ था, लोग मानेंगे नहीं बट मैं भाई विश्वास रखता है।
तो काफी लोग नहीं मानते, हाँ। बताया फिर भी को लोग मानते नहीं क्योंकि उनको लगता है कि फेंकते, पर जो उनके साथ ये चीज होगी ना तब वो मान लेंगे कि नहीं ऐसी कोई चीज होती है, नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ रहती है कुछ। तो जब मैं सूरत में था, मैं अकेला रहता था सूरत में, तो मेरी मम्मी गांव में रहती थी क्योंकि दादा की तबीयत खराब रहती, तो पूरा पूरे घर में मैं अकेला ही रहता था। तो मैं परफ्यूम का पहले से बहुत अच्छा शौकीन रहा हूँ, परफ्यूम हमेशा मैं लगा के ही ऑफिस जाता था। तो मैं नाइट ड्यूटी में जाता था, तब मैं डायमंड में नौकरी करता था, तो वहां पे जब जाता था ना तो पूरा परफ्यूम लगा के जाता था। अभी भी आपको स्मेल आई ही होगी कि मैं लगा के ही निकलता हूँ, वो चीज नहीं अभी भी छूटी, वो हो गया उसके बाद भी। तो वहां पे जैसे मेरी गली के बाहर निकलते तो वहां पे एक बरगद का पेड़ था, और वहीं से मैं हर बार निकलता था, दूसरा रास्ता था पर मुझे वो जल्दी निकलने में मदद करता था, तो मैं वहीं से निकल जाता था ऑफिस में। नाइट के अगले एक वीक के बाद मेरा डे शिफ्ट आया, फिर थोड़ा थोड़ा मुझे वो मानसिक त्रास बोलते ना उसको, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर आने लगा कि थक जाता हूँ ऐसा लगने लगा था,
मेंटली एग्जॉस्टन होने लगा।
तो जैसे ही डे शिफ्ट में मैं आया, आके काम खत्म करके जैसे ही मैं रात को सोने आया, मैं 11 बजे सो जाता था, जैसे ही आता था 11 बजे सो जाता था। 11 बजे जैसे ही मैं सोया, शायद 1:30 या 2 बजे हो गए शायद, या 3 बजे को, वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि तब मैं नींद में था, थका हुआ था क्योंकि नाइट शिफ्ट में से डायरेक्ट डे शिफ्ट में आया था, तो थका हुआ था, सो गया था। फिर मुझे लगा कि धीरे से कोई मेरे यहाँ पे कंधे पे छू रहा है, तो फिर क्यों थका हुआ था तो बहुत ध्यान नहीं दिया मैंने, तो मैं वापस घूम गया, तो यहाँ से फिर वापस छुआ,
वापस ऐसे लगा हाँ, कोई छू रहा है।
मैं वापस घूम गया तो थोड़ी देर बाद यहाँ से ऐसे हाथ आया, एक जैसे एक मर्द का बड़ा हाथ होता है अपना जैसा हाथ रहता है, वैसा ही हाथ मेरे चेहरे पे आया, और वो मुझे फील हो गया कि ये मेरे मुंह पे किसी का हाथ है, वो अपने यहाँ पे अगर छुएगा अपने फेस को तो वो अपना पता चल जाता है कि कोई छू रहा है। तो मैं जैसे ही घुमा नींद उड़ गई मेरी, देखा कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि मुझे ही कुछ वहम, क्योंकि तब मैं इन सब चीजों में बहुत मानता नहीं था। हाँ एक्सपीरियंस हुए थे मुझे, पर मैं उतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं करता था इन चीजों पे कि नहीं ये चीज रियली में होती ही है। वो एक्सपीरियंस तो पहले भी हुए थे पर मैं थोड़ा मजाक में ले लेता था कि ऐसे ही हो जाता होगा,
ये पर्सनली हो रहा था। तो
हाँ तो वो पर्सनली हो रहा था, तब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ तो है। पर तब भी मैंने ऐसा मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है, मैं थक गया हूँ उसकी वजह से, शायद मुझे थकावट की वजह से वो हो रहा है। दूसरे दिन मैं आया वापस सोया, तब मुझे खास याद है कि 12:30 बजे थे, क्योंकि सोए अभी एक घंटा भी नहीं हुआ तो नींद कच्ची रहती है अपनी, बहुत अच्छी नींद रहती। वो पूरा मेरे यहाँ गर्दन पे और मेरे चेहरे पे पूरा हाथ घुमा रहा है, ऐसा पक्का फील होने लगा मुझे। मैं उठा, देखा पूरे घर में लाइट करके, मुझे पहले लगा कि शायद कोई चोर है कि या क्या चीज है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कर कौन रहा है मेरे साथ। तो वो मैंने पूरे घर में देखा, मेरा घर काफी बड़ा था, तो दो रूम थे और एक बड़ा किचन था, और उसके ऊपर एक माला था जहाँ पे वो हम जब जो चीजें होती है ना किचन की वो रखते, पर वो खाली था क्योंकि चीजें सब मैंने नीचे रखी हुई थी, क्योंकि अकेला रहता था सब मुझे बनाना होता था। तो वो चीजें मैंने ऊपर कोई कुछ रखा ही नहीं था, पूरा खाली था। मैंने सब चीजें देखा, वहां भी ऊपर चढ़ के देखा पर कुछ दिखा नहीं मेरे को,
खाली खाली था,
पूरा खाली था, लाइट करके देखा था। फिर हुआ तीसरे दिन ये सब जो रियल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। मैं सोया था तो मुझे लगा कि मुझे मेरे पीठ पे कोई ऐसे मार रहा है धीरे धीरे, जो नाखून होते ना बड़े बड़े, हाँ वो ऐसे घुमा रहा है। तो मैं थोड़ा ऐसे हो गया पीछे से कि कोई लगा मुझे,
चुभा कुछ तो ऐसा,
कि मुझे हमारे वहां चूहे काफी होते थे,
तुम्हें लगा कि चूहा काट
रहा है। तो मैं ऐसे करके देखा कि चूहा तो नहीं है, पर चूहा नहीं था। पर वापस सो गया, वापस थोड़ी देर बाद ऐसा होने लगा कि पीठ पे कोई मार रहा है, पर उसके बाद मेरी नींद उड़ गई। और उड़ के जैसे मैंने ऐसे घूम के देखा तो वो जो माला होता है ना किचन के ऊपर, वहां पे एक ऐसा हाथ रखा हुआ था जो माला पकड़ा हुआ रहता है ना, जैसे कि कुछ जाना है अभी मेरे ऊपर उसको, वैसे पकड़ा हुआ था। पूरे शरीर में बाल थे, वो जो अपना जंगली रीछ होता है ना बेर, उसके माफिक पूरा ब्लैक उसका बॉडी पे बाल था, पर था इंसान पर पूरे शरीर में बाल थे। और वो आपके आपके एक एपिसोड में वो भाई ने बोला था कि पीली आंखें, सेम पीली आंखें, और उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना था कि वो मैं साक्षात देख रहा था कि ये कोई जानवर जैसा कोई बैठा हुआ है। और यहाँ तक उसकी हंसी थी, जैसे कि वो जोकर वाली की हंसी नहीं आती, यहाँ तक होती, यहाँ तक उसका जबड़ा खुला हुआ था और इतने लंबे लंबे दांत हो गए उसके, और वो मेरे सामने देख के हंस रहा है। पूरा पूरे लाल दांत थे कि जैसे खून अभी पी के आया हो, वैसे ही दांत थे उसके। तो वो देख के मैं इतना घबरा गया कि मैं हड़बड़ाहट में पूरा बिस्तर से नीचे उतर के मैंने डायरेक्ट लाइट चालू कर दी।
तुझे बोलने भी नहीं जम रहा अभी, वो उतना डर था।
अरे वो मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है जब मैं बात करता हूँ
उसके बारे सोच के।
हाँ सोच के कि मैं कैसे उसका वो डिस्क्राइब करूँ कि मेरे साथ तब क्या हुआ था और मैंने क्या देखा था। तो मैंने लाइट चालू की, देखा कुछ नहीं था, ऐसे ही देखा मैंने, ऊपर चढ़ के नहीं देखा क्योंकि मैं डर चुका था पूरा कि मैंने पक्का देखा था। क्योंकि ना हमारे जो घर के बाहर ये खिड़की होती है ना, उसकी लाइट चालू रहती थी बाहर की, तो उससे डायरेक्ट किचन दिखता था कि लाइट में, तो वहां से पूरा प्योर तरीके से मैं देख सकता था कि वहां पे कोई ना बैठा था। वो मैं अच्छी तरह से देख लिया था कि वहां पे वो चीज थी, पर फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर चढ़ के वहां पे देखूं। फिर वापस आया और ऐसे घूम के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा मैं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कोई ना कोई मेरे साथ है। फिर ये मैंने अपने वीडियो भी में नहीं बताया कि धीरे धीरे हंसने की आवाज चालू हुई थी, और कभी कभी रोने की आवाज छोटे बच्चे की हो जाती है, कभी कभी हंसने की, कभी कभी औरत से लेके आदमी तक का हंसने का आवाज घूम रहा है, आवाज बच्चे से लेके आदमी औरत वो सब हो रहा है सांस में। और मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी, कभी कभी बात याद आ जाते हैं तो मैं रात को अभी भी उठ जाता हूँ कि वो अभी भी मेरे घर पे तो नहीं है, मेरे पीछे तो नहीं आया। तो सुबह हुई जैसे तैसे, मैं सोया नहीं था पूरी रात, उसकी वजह से सुबह मुझे बहुत बुरी तरह से बुखार आ गया था। क्योंकि मैं उतना डर चुका था,
डर गया था, बट ऑब्वियसली वो कर
रहा है, वो मेरा पूरा बॉडी हीट मार रहा था, इतना गर्म हो चुका था मेरा, उतना मैं डर चुका था, और मेरा सर तो फटा जा रहा था। उसके बाद ही ना मुझे माइग्रेन की तकलीफ हो गई, क्योंकि उतना मैं डर चुका था कि मैंने ये चीज देखी क्या, वो क्या रियल में ऐसी थी या नहीं थी, मैं कंफ्यूज था पूरा कि क्योंकि कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि ऐसा कोई जानवर हमने कभी नहीं देखा। हम अब सपने भी इसमें ऐसा तो नहीं सोच सकते कि ऐसा कोई जानवर भी होगा।
मुझे अगर इमेजिन करना है तो भी मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ।
हाँ,
मतलब अगर तुम बोल रहे कुबड़े जैसा ऐसा बैठा था,
कुबड़े जैसा बैठता है, और पीली पूरी बड़ी आंखें, और हंसी यहां तक थी, यहां तक हंसी, और पूरे दांत दिख रहे। वो ब्लडी मेरी देखी है आपने
मूवी?
हाँ, वो उसका फोटो आता है ब्लडी मेरी का। हाँ, उसने यहाँ से काटा हुआ रहता है, ऐसा कुछ रहता है।
हाँ, तो जोकर जैसे ना।
हाँ, जोकर जैसे, कि जोकर के यहाँ तक वो जो हंसी रहती है ना वैसी, पर वहां तक दांत थे उसके। वो सी फंसी नहीं थी वहां, उसके दांत यहाँ तक के थे, कि उसका जबड़ा कटा हुआ है यहाँ तक का, वो दिख रहा था पूरा। और मैंने वो पूरा ऐसा समझ लीजिए कि 4K में देख लिया था, और उस वजह से मैं बहुत डरा था। फिर मैं अपनी मासी के घर चला गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि 25 साल का लड़का ऐसी बातें करेगा तो लोग हंसेंगे कि क्या बात कर रहा है 25 साल का। और हमारे वहां डरना मतलब बहुत कायरता समझते हैं लोग, कि डरना नहीं है किसी भी चीज, पर मैं डरा था। वो आज भी और शायद मुझे पूरी लाइफ अपना याद रहेगा कि मैंने वो देखा था। अगर मैं किसी को बताता ना तो कोई यकीन भी नहीं करता उस बात पे, क्योंकि मैं उसी घर में पिछले 1 साल से अकेला रहता था, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर ना वो सब क्या बोलते हैं कि मेरी मम्मी भी, मेरे मम्मी को बोला ना तो मम्मी ने बोला कि तू अगर बोले तो मैं वापस आ जाती हूँ, तुझे अगर नहीं जम रहा है अकेले तो मैं वापस आती। तो मुझे लगा कि मेरी मम्मी को भी झूठ लग रहा है ये चीज, कि वो भी ऐसा बोल रही है कि तुझे अकेले नहीं जम रहा है तो मैं आ जाती हूँ, तू ऐसी बातें मत कर। तो फिर मैं, हमारे पंडित जी है, जानकारी है, मेरे मम्मी की फ्रेंड है वो, तो उनके पास में गया और उनको मैंने सारी चीज बता दी। मासी को बोला ही नहीं, 3 दिन मुझे बुखार रहा था, बहुत बुरा बुखार, और उसके वजह से मैंने 4-5 इंजेक्शन भी खाए होंगे शायद। तो गया मैं और उनको बताया कि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, और ये क्या चीज है, मैंने ये चीज देखी अपनी आंखों से। तो उन्होंने, वो महाकाली माँ की बहुत बड़ी भक्त है, और उनसे माता बात करती है, जो गेहूँ होते हैं ना वो गेहूँ डाल के वो बात करती है, और उनसे उनको जवाब मिलते हैं दिए में से, वो दिया रखती है और उनके सामने गेहूँ डालती है। तो उन्होंने, मैंने ये नहीं बोला था कि वो कैसा दिखता था, मैंने ये बोला कि मुझे एक सपना आया था, मैंने पूरा नहीं बोला कि मैंने ये दिखा ही है, और मैंने ऐसा बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, पर मैंने उसका जो पिक्चर होता है ना वो उनको डिस्क्राइब नहीं किया था कि वो ऐसा दिखता था। फिर उन्होंने बोला कि हंसी थी, बड़ी आंखें थी, पीली आंखें थी, पूरा शरीर काला था। फिर ना वो, जब मैं उनके सामने बैठा था ना, वो मेरे एक एक ग्रुवा शरीर का खड़ा हो रहा था, उसकी वजह से गूज़बम्प्स इतने आ रहे कि इनको ये चीज कैसे पता चल गई। मैंने तो उनको सिर्फ बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, या मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है। मैंने उनको पूरी सच्चाई ये नहीं बता दी थी कि मैंने ये चीज देखी, पर उन्होंने बोल दिया कि बेटा तुम ना बोलो पर हमको देवी तो बोल सकती है कि ये चीज है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी माँ जो तुम्हारी कुलदेवी की पूजा करती है ना, उसकी वजह से तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारी रक्षा करती है। मैं पूजा पाठ तो मैं भी करता था, पर जब वो चीज जब मेरे साथ हो रही थी ना, तब मैंने पूजा पाठ छोड़ दिया था, क्योंकि नहीं कर पाता था, नाइट शिफ्ट थी, थक जाता था और सो जाता था, ऐसा सोचता कि शाम को कर लूंगा, फिर शाम को निकल जाता था ऑफिस पे, तो उसकी वजह से हो नहीं पा रहा था घर पे। तो उसकी वजह से वो घर पे आ चुका था, वरना घर पे नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी की मैं बहुत पूजा करता था उस टाइम, और आज भी करता हूँ हनुमान जी की पूजा। तो उन्होंने बोला वो कोई जानवर नहीं था, वो एक, उनका नाम बताया उन्होंने, वो एक चुड़ैल थी, जो डायन बोलते हैं, बरगद वाली हाँ, बरगद वाली डायन थी वो, और वो मेरे परफ्यूम से आकर्षित होके मेरे पीछे आई थी। और वो डायन ऐसी है कि आपको ना मरने पे मजबूर करती है। उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी कुलदेवी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, कि उसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, वरना वो तुम्हारे पे अगर असर करती ना ज़्यादा, जो तुम्हारे चेहरे पे हाथ घुमाया जा रहा था, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें डाल रही थी धीरे धीरे, हाथ घुमा के कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम धरती पे बोझ हो, वो सब. और वो मुझे आ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ सूरत में. मैं पूरी पूरी रात काम करता हूँ और मुझे सैलरी तो उतनी मिलती नहीं है. पूरी रात 12 घंटे की मैं शिफ्ट करता था, फिर भी सैलरी 8,000 10,000 आ रही है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ. वैसे ख्याल आने लगे थे मुझे, पर उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी कुलदेवी की वजह से तुम बचे हुए हो, ना ये जो डायन है ना वो लोगों को मरने पे मजबूर करती और मार के ही रहती है. फिर उन्होंने मुझे दो धागे बांध दिए, एक काला पैर में बांधा और एक हाथ में काला बांधा, और उन्होंने बोला 3 दिन तक पूरा पवित्र रहना है, और उसके बाद पीपल के वृक्ष होता है ना जो अपने, वहाँ पे जाके ये जो पैर में बांधा हुआ 3 दिन बांध के वो वहाँ पे जाके जला देना है, और बिना कुछ बोले वापस आ जाना है.
देखना भी नहीं पीछे,
पीछे देखना नहीं है, कुछ बोलना भी नहीं है, वहाँ पे जाके सिर्फ धागा पैर से काटना है और जला देना है बस. उसके अलावा कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं, डायरेक्ट घर पे जाना है वापस, वो भी मासी के घर. मेरे घर पे जाने भी उनको मना, उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम्हें अपने घर नहीं जाना है वापस, तुम अपने मासी के घर जाना है, क्योंकि तुम अगर अपने घर वापस जाओगे ना तो वही चीज़ हमको वापस रिपीट करनी पड़ेगी. तो फिर वहाँ से 3 दिन गुजरे, पूरा पवित्र मतलब ब्रह्मचारी रहना था, एक वो सब अच्छा खाना था, सात्विक खाना था, और वो तो मैं कर वो सब किया मैंने 3 दिन. और मैं ऐसे भूल तो करने वाला नहीं था, मैंने वो धागा काटा डाल के आया, और पीछे तो मैं बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो चीज वापस मुझे दिखे. मैं देखना ही नहीं चाहता उस चीज पर. आज भी वो चीज मेरे जहन में बस चुकी है, वो नहीं निकल रही है. फिर मैंने जब ये सब हो गया ना, अभी ये धागा मेरे हाथ में अभी भी है, ये उन्होंने मुझे निकालने से मना किया है कि ये धागा कभी, अगर तुमको लगता है कि ये धागा अगर टूटने लग रहा है तो ये धागा नहीं आके बंधवा जाना है, पर ये धागा हाथ से नहीं निकालना. तो ये आज भी ये शायद 3 साल या 2 साल हो गए, पर ये धागा मैंने अपने हाथ से नहीं निकाला, और मैं निकालने क्योंकि मैं उसको देखना ही नहीं चाहता. अगर इस बार मैंने देख लिया ना तो उस टाइम तो मुझे मिनी हार्ट अटैक आया था, इस बार तो मैं पक्का मर जाऊंगा, इतना बड़ा हार्ट अटैक आएगा. तो उससे भी खतरनाक काफी स्टोरीज तो है मेरे पास, मेरे गांव की भी है, पर ये चीज मुझे अपनी पूरी लाइफ याद रहने वाली थी, क्योंकि ये चीज मैं भूल नहीं पा रहा था, और आज भी मैं वो भूल नहीं पा रहा.
बट इसका सोल्यूशन मतलब यही इतना ही सोल्यूशन था,
इतना ही सोल्यूशन था. उन्होंने जो देवी होती है ना, जो महाकाली माँ, उनको क्या हमारे गुजराती में उसको वारे आना बोलते है, कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए लड़ती है, और लड़के उनको वापस भेज दिया. पर उसके बाद मैं उस घर में भी नहीं रहा था, मैंने तुरंत घर बदलवाया, और मेरे जो सामान था ना वो भी मेरे मासी का लड़का लेने गया था. मैं तो उस घर पे भी वापस नहीं गया, कि मुझे जाना ही नहीं है वहां पे. फिर
वो घर क्या भाड़े पे था?
हाँ, वो घर भाड़े पे था.
अच्छा.
और फिर उसके बाद तो वहां पे लोग रहने आए थे, पर उनको कुछ ऐसा हुआ नहीं. पर वो चीज हुई थी मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा के और ऐसे रास्ते से निकलता था, तो उसकी वजह से वो आया था. पर वो ईश्वर की कृपा से अपन बच गए, वरना तो उन्होंने जो बोला पंडित जी ने कि बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को, ये चीज तुमको छू पाई सिर्फ वही बड़ी चीज हुई उसके लिए. फिर वो तुमको डराना चाहता था कि अगर ये डरेगा ना तो कुछ इसके साथ अगर कुछ बुरा हो जाए, तुमको बुखार आया जैसे मुझको बुखार आ गया, कि बुखार इतना तेज आ जाए कि उसकी होता है ना कि काफी बुखार ज्यादा हो जाए तो दिमाग पे चढ़ जाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है. तो पर वो भी नहीं हुआ मेरे साथ, वो ईश्वर की इतनी कृपा थी तो बच गया. पर वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा. फिर उसके बाद मैंने सबको बताया, तो काफी लोग अभी भी हंसते जब मैं बताता हूँ. मैंने वीडियो भी डाला ना जब, तब भी काफी लोग हंसे थे कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कहाँ, कौन सी डायन ऐसी दिखती है. तो तुम जब देखोगे ना ये डायन, तब तुमको पता चलेगा कि डायन असल में दिखती कैसी है. उसको बोलते है डायन, वो सफेद साड़ी में नहीं आती, वो जो मैंने देखा उसको डायन बोलते.
साड़ी कपड़े वपड़े कुछ
नहीं, कुछ नहीं था, पूरा शरीर बाल, काले बाल था शरीर उसका, जैसे वो होता है ना चिंपांजी कैसा होता है कि उसके शरीर में
बाल भी नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा बीच कैसे मैं मेरा डिस्क्रिप्शन देता है तो एक तो फिगर रहेगा,
हाँ फिगर
फिगर
इंसान के जैसा ही,
बीच में ही ऐसे सफेद सफेद दिखने वाले या फिर कुछ ना दिखने वाले ट्रांसपेरेंट पैचेस रहेंगे, तो वो
डार्क था पूरा।
हाँ,
कि आर पार नहीं देख पा रहा था, पर उसकी आंखें ना, आंखें इतनी चमकीली थी कि वो तो मैं खास याद रख,
बिल्ली जैसी,
हाँ बिल्ली जैसी पर पूरी पीली आंखें चमकने वाली, और उसकी हंसी, वो दोनों मुझे खास याद है। वो बाल अंधेरे की वजह से मुझे बाल लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल है, वो तो डार्क फिगर था पूरा पूरा डार्क, कि आर पार ना देख पाऊ इतना डार्क था वो, और उसकी हंसी और आंखें पक्का दिख रही थी, वो तो फाइनल थी कि ये तो ये चीज है ही है।
लोग कमेंट्स में अगर मैं रील बनाता हूँ तो स्पेशल रील के लिए ऐड कर रहा हूँ, कि लोग बोलेंगे कि कौन सा माल लाया था भाई या फिर क्या फूका था। अगर अगर तुम्हारे तुम्हारे जगह पे वो होंगे तो उन्हें पता चलेगा,
तब, कि तब उनको पता चलेगा कि क्या हाल होता है जब आपके साथ ये चीज होती है। लोग नहीं मानते, लोग हंसी में निकाल देते कि क्या है ये चीज तुम फेंक रहे हो कुछ, पर जब वो ये चीज को फील करेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि ये चीज होती क्या है आखिर में, और नेगेटिव एनर्जी रियल में एग्जिस्ट करती है। वो लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके साथ होगा नहीं। और काफी लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं आती, तुम लोगों के पास क्यों आती। अरे भाई, ऐसी भगवान से मांगो, ऐसा मांगो कि आपके पास कभी आए भी ना। अगर आ गए ना तो तुम भी अपनी पूरी जिंदगी और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी उस चीज को। अगर तुम पूजा पाठ नहीं करते हो, अगर तुम ईश्वर में नहीं मानते हो, और तुम अगर चाहते हो को वो तुम्हें दिखे, और अगर सच में वो तुमको दिखा, तो फिर तुम समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है।
मैं अभी मेरा ध्यान है ना आपके फोरहेड पे जा रहा है बार बार, क्योंकि फोरहेड पे आपके ना नेचुरल तिलकम बनता है ऐसा यू में, तो वो मैं देख के ना बहुत एस्टोनिश हो गई। बहुत रेयर लोगों का वो किस्मत रहता है जो हनुमान जी के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो उन लोग के माथे पे वो उठने लगते, तो आप उनमें से एक हो, तो वो मैं फील कर पा रहा हूँ कि लाइक आप वैष्णव और हनुमान भक्त हो,
हनुमान इसलिए बचपन से बहुत,
हाँ जी, तो इसलिए वो उठता है।
मैं ये चीज मैंने भी पहली बार सुनी, मैंने मुझे किसी ने बोला नहीं था,
तुम्हें नहीं दिखा अभी,
नहीं, मुझे अब तक कभी नहीं दिखा,
मुझे ही दिख रहा है, मतलब तुम भक्त हो, मतलब है कुछ है। अगर ये पार्ट मैं नहीं डालूंगा तो वो समझ जाना कि लाइक ये बाहर नहीं आना चाहिए, बिकॉज बहुत रेयर लोग हैं जिन लोगों के माथे पे मैं देख रहा हूँ आजकल।
अच्छा?
मेरे को दिखाई दे रहा है ये चीज जो फोरहेड पे है ना
यहाँ पे, ऐसा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं दिखा,
आज ही दिख रहा है। रुक एक सेकंड, मैं फोटो पे आई वेट, मैं क्लिक करके बताता हूँ। नहीं रे, कैमरा पे भी नहीं आ रहा,
दिखने में आया होगा,
कैमरा पे भी नहीं आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है।
ये अब ये थोड़ा डरावना हो रहा है।
नहीं सीरियसली, मैं देख पा रहा हूँ, इट्स प्रॉपरली जो हम लोग
तिलक करते हैं,
तिलकम लगाते हैं,
हाँ, तिलक करते,
मेरे माथे में भी तिलकम उठ जाता है कभी कभी ऐसी, तो वो मैं देख पा रहा हूँ,
दिख रहा है।
हाँ,
पर मैं ना बचपन से हनुमान जी को मैं अपना गुरु बनाया हूँ ना, हमारे वहां ना गुरु बनाए बिना कुछ काम नहीं होता।
हाँ, हाँ।
तो मुझे ना किसी साधु पे पहले भरोसा नहीं था, तो तब मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा अगर तुमको गुरु ही बनाना है ना तो हनुमान जी को गुरु बनाओ।
ये देखो, दिखाई दे रहा है तुम लोग को थोड़ा,
हाँ दिखा, यहाँ से ऐसे आ रहा है,
हाँ
दिखा। तो मम्मी ने बोला कि अगर तुझको किसी साधु संत पे भरोसा नहीं है, तब मुझे नहीं था पहले, पर गुरु हमारे में बनाना वो होता ही है कि गुरु तो तुमको बनाए नहीं है कुछ भी, शायद तुम 18 साल या 17 साल के होगे ना उसके बाद तुमको गुरु बनाना है। तो मम्मी ने बोला कि हनुमान जी को ही बना ले, क्योंकि उनसे अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। तो फिर मैंने गुरु उनको ही मान लिया और उनके नाम की कंठी पहन ली थी कि आज से वो ही मेरे गुरु है। और हनुमान चालीसा भी काफी उसके बाद मैंने पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया, पर अभी भी ना दिल में हनुमान जी की लिए मेरे में प्यार कुछ अलग ही है। मैं ऐसा समझ, मुझे ऐसा हमें कई बार लगता है कि ऐसे चीज मैं जब फील करता हूँ ना, तब जब मैं नाम लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हनुमान जी मेरे साथ खड़े हुए और मुझे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज से। मैंने जब मैं बोल सकता हूँ ना जो मैंने डेट का बोला वो,
हाँ,
जब मैं 17 साल का था तब मेरे डैड एक्सपायर हो चुके थे और मैं घर में अकेला लड़का था, तो उसके बाद ना काफी टेंशन में आ चुका था कि मैं अब क्या करूंगा आगे, मुझे कोई दिख नहीं रहा था अपना फ्यूचर कि मैं क्या करूं। 17 साल का बच्चा क्या कर लेगा, क्या दिखेगा उसको। यहाँ पे सिटी में आप लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं 17 साल, और हमारे गांव में वो चीज बहुत
रेर रेर
रहती है कि तब तक तो हम खेलने में ही निकाल देते हमारे 20 साल तो
समझ नहीं आती।
हाँ, समझ नहीं आता था, तो काफी टेंशन में आ चुका था। फिर हनुमान जी का पाठ चालू किया मैंने, सुंदरकांड पढ़ा, फिर हनुमान चालीसा तो मैं हर रोज 7 बार पढ़ता ही पढ़ता था। पर उसमें ना वो एक महाराज जी थे, उन्होंने बोला था कि हनुमान चालीसा में जो बोलते हैं ना कि तुलसीदास सदा हरि चेहरा, उसमें तुलसीदास नहीं बोलना है, उसमें अपना नाम बोलना है, तभी वो तुम्हारी हनुमान चालीसा ना हनुमान जी के हाँ पावन होती है। तो मैं मेरा नाम लेके ही बोलता था।
अभी समझ रहा है मुझे क्यों आ रहा है।
तो मैंने वो 3-3.5 साल तक कंटिन्यू किया, हर रोज मैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। कि ऐसा नहीं कि बुक लेके हनुमान जी के पास बैठ के, मैं अगर बैठा हुआ हूँ ऐसे भी तो मैं अपने दिमाग में हनुमान चालीसा मेरे चल रही है, मैं बोले जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफी उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की,
वो है सच।
और उनकी वजह से आज शायद मैं वो चीज देखने के बाद आज भी जिंदा हूँ। और कुलदेवी का तो आशीर्वाद है ही हमारे ऊपर पहले से, पर मुझे लगता है कि उन मेन आशीर्वाद मुझे हनुमान जी का हमेशा से लगता है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा था साइकोलॉजी की, आपको चलिए अब मेरे जो मेरा मेन थीम है ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, कि ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री आज कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, पर इंडिया में ना उतना ज्यादा अच्छा वो अभी फैला नहीं है। एक दो लोग अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, पर फिर भी ना कुछ चीजें वो बोल नहीं पाते, पर मैं तो पूरा बोल डालने वाला हूँ कि डिमोनिटाइज हो जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कमा लेता हूँ अलग से कुछ। पर ये चीज मुझे लोगों तक पहुंचानी है कि कैसे एक इंसान इतने लोगों को मार सकता है। मैं बेसिकली बनाने वाला हूँ सीरियल किलर्स पे डॉक्यूमेंट्रीज, और मैंने साइकोलॉजी पे ही स्टडी की हुई है, तो मैं मुझे ना उसमें पहले से ही काफी इंटरेस्ट था। ये होस्ट में तो मुझे है ही क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद मैंने और जाना उस चीजों में, और फिर मुझे पक्का विश्वास है कि ये लोग जो स्टोरियां बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है उनकी,
तथ्य है।
हाँ, कि वो सच बोल रहे हैं, वो ऐसे हवा में फेंक नहीं रहे। फिर ना मैंने एक कहानी सुनी, यूट्यूब पे आई थी, तब मुझे लगा कि नहीं ये चीज अभी थोड़ी ना छुपाई जा रही है सीरियल किलर्स वाली, फिर भी थोड़ा ना उनको हीरो बनाया जा रहा है, काफी लोग ऐसे है जो उनको हीरो बना रहे, वो लोग हीरो नहीं थे, वो लोग शैतान है, और लोग अभी भी उनको काफी, जैसे कि टेड बंडी है, उनको उसको अमेरिका में काफी लोग हीरो मानते हैं उसको,
टेड को ना,
हाँ टेड को, कि वो काफी, पर वो नहीं सोचते कि उसने क्या लड़कियों के साथ किया था और वो कैसा इंसान था। अगर उसकी जगह आप का वहां पे इंसान काफी, वो लोग बोलते हैं कि वो काफी चार्मिंग दिखता था, उसकी वजह से लोग उसके दीवाने हुए थे, पर उसकी जो मरी हुई लड़की आए उसकी जगह अगर आपके घर का कोई होगा तो आपके क्या बीतेगी, तब भी आप उस इंसान को हीरो मानोगे, नहीं मानोगे। पर आपको पता है वो लोग क्यों मारते हैं लोगों को,
उन लोग को एक
ऐसी क्या फैंटेसी होती है,
नहीं उन लोगों का एक साइकोलॉजिकल कार्मिक, अगर तुम लोग देखने को जाओगे स्पिरिचुअली तुम लोग देखने को जाओगे तो उन लोग का इम्बेलेंस कार्मिक होता है, वो जन्म जन्म से उन लोग के साथ आता है। अगर तुम लोग ये पास्ट लाइफ को छोड़ के तुम लोग प्रेजेंट लाइफ का तुम लोग देखोगे तो मोस्टली चाइल्डहुड ट्रॉमा इज द बिगेस्ट, और नार्सिसिज्म, ये बिगेस्ट दो क्लॉजेस रहते हैं जो मौत का नतीजा बनते हैं लोगों से, या फिर पैसा।
देखो ये इन चीजों में ना बचपन से, आपने बोला वो तो एक चीज है ही कि बचपन से उनके दिमाग थोड़ा तो हिला रहता है,
ट्रॉमा रहता है
उनका रहता ही, पर लोग ना बोलते हैं कि वो सीरियल किलर ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, हमको ऐसे परेशान किया गया था, हमारे साथ वैसा हुआ था, उसलिए हमने उसकी वजह से हमने लोगों को मारा, पर उसकी वजह से वो लोगों को नहीं मारते, उनकी बचपन से वो दिमाग में वो रहता ही है, पर ना उनके साथ क्या आपको और हमको कभी अपने माँ बाप ने नहीं मारा होगा? मारा ही होगा, अगर हम शैतानी करेंगे तो मारेगी। मेरी मम्मी तो झाड़ू लेके झाड़ू तोड़ देती थी, उतना मारा था, तो उसकी वजह से सीरियल किलर थोड़ी बनेगा इंसान। पर वो उस इंसान ना, आपने सुना होगा कि काफी बार बोलते हैं कि शेर आदमखोर हो गया, किसी को भी मार देता है। वो इंसान भी आदमखोर ही पैदा होते है, जैसे शेर आदमखोर पैदा हुआ होता है वैसे इंसान भी आदमखोर पैदा हुआ। वो उनका दिमाग पहले से ही वैसा रहता है, बस उनको ना कुछ चीज ट्रिगर जैसे ही कर जाएगी ना, वैसे वो उस चीज को पकड़ लेंगे कि जैसे कि कोई लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, उनको वो प्यार करते हैं, तब तक वो चीज दबी हुई रहती है, पर वो चीज सिर्फ ट्रिगर करती है, उसकी वजह से वो सीरियल किलर नहीं बनते, उनसे वो सिर्फ ट्रिगर होते और उनका जो शैतान अंदर का है ना वो जाग जाता है, और उसके बाद वो स्ट्राइक पे स्ट्राइक करते जाते हैं, और वो ऐसे ही किसी इंसान को नहीं मार देते, वो बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद ही मारते। अगर कोई केस हुआ है ऐसा कि वो जैसे तैसे इंसान को कहीं भी मार रहा है, तो वो सीरियल किलर नहीं, वो पागल है। सीरियल किलर पूरा प्लानिंग करता है मारने के लिए इंसान को, कि किस इंसान को मारना है, कैसे मारना है, और कब कहां से कैसे उसको उठाना है, और वहां से कहां ले जाना है, और उसका मौत के बाद उसके साथ क्या करना है, वो भी वो डिसाइड पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद ही वो काम करते। आपको शायद पता होगा मुंबई में दो सीरियल किलर हुए थे 90s के दशक में, स्टोन किलर थे,
एक स्टोन किलर था,
दो थे, हाँ। एक नहीं थे, वो दो थे, और उन दोनों के बीच
रमारान राघव ऐसा कुछ तो,
वो दोनों पकड़े ही नहीं गए, जो पकड़ा गया ना वो है, ये दोनों तो पकड़े ही नहीं गए, सिर्फ न्यूज में आया था उन लोगों ने ना 40 लोगों को मार दिया था दोनों ने, उन दोनों के बीच में शर्त लगी थी, ये चीज सिर्फ बाहर आई थी पुलिस के जो खबरी होते हैं उसकी वजह से, कि वो पुलिस ने बताया था कि ऐसे लोगों ने किया हुआ है, पर उसके बाद वो कभी पकड़े नहीं गए। वो कैसे लोगों को मारते थे पता है, जो सड़कों पे सोते हैं ना लोग, उनको ज्यादातर टारगेट सीरियल किलर उनको ही करते हैं जिनका आगे पीछे ज्यादातर कोई ध्यान देने वाला नहीं रहता, पहले वो उनको ही टारगेट अपना बनाएंगे, क्योंकि उनके पीछे कोई देखने वाला नहीं और उनका फैंटेसी पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने ना 40 लोगों को मार दिया, पर उसके बाद वो भी कभी भी पकड़े ही नहीं गए। और FBI का भी एक रिपोर्ट था कि 500 ऐसे सीरियल किलर है जो बूढ़े होके मर चुके हैं, नेचुरल डेथ, पकड़े ही नहीं गए कभी भी, और उन्होंने कितने लोगों को मार दिया होगा कि उनको भी FBI वालों के उनके पास भी डिटेल नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों को मार दिया होगा, और 500 लोग ऐसे ही मर चुके हैं, 500 सीरियल किलर, कि उसके उनके मरने के बाद ये पता चला कि ये लोग सीरियल किलर थे। और आज भी 2500 ही था डेटा में, उसमें था 2500 सीरियल किलर ऑलरेडी US में अभी भी है, 2500 कितने सीरियल किलर है, पर वो पकड़े नहीं गए, वो आज भी आम इंसानों के बीच में है।
अभी रिसेंटली आपने वो शीना बोरा मर्डर केस के बारे में पढ़ा?
नहीं अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं अभी अपने काम में था तो वो नहीं पढ़ा मैंने।
तो वो एक केस है जिसमें उसने खुद के बेटी को मार दिया था, वो नेटफ्लिक्स पे अभी उसने डॉक्यूमेंट्री बनाया कि उसने नहीं मारा है, और वो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ बाहर है अभी,
अपनी बेटी को मार दिया,
बेटी को मारने गई थी पर बेटे को शक आ गया और वो बेटा भाग गया, और इसके कनेक्शंस बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, जी मीडिया का जो अभी ये जी ऑफिस इधर ही है बाजू में मेरे,
हाँ शायद मैंने सुना तो है इस बारे में कि कुछ आया है केस ऐसा, पर मुझे अभी तक पक्का नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी अपने रिसर्च में पढ़ा हुआ था तो मैं बाकी सब छोड़ दिया था अभी सोशल मीडिया।
उसके बारे में एक बार पढ़ लेना, अगर मैं पढ़ूंगा जरूर, टाइम मिले तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे
उसके बारे में, जरूर करेंगे,
तो वो भी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग केस है।
आपने इंडिया के बारे सीरियल किलर के बारे में सुना होगा, इंडिया में काफी साइनाइड मोहन वो सब काफी हुए, ठीक है, फिर वो बच्चा था, 3 बच्चों को मार दिया था कुछ उसने, पर आपने कभी रशिया के सीरियल किलर के बारे में नाम सुना है?
ज्यादा नहीं, बिकॉज मैं बोला जैसे ट्रू क्राइम में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता,
क्योंकि यहाँ पे ना लोग कैसा करते हैं कि सिर्फ USA के जो फेमस वाले, क्योंकि USA में अगर सीरियल किलर होगा तो वो इंडिया पूरी दुनिया में फेमस होगा, लोग उनको जानते हैं, पर उनसे बड़े बड़े सीरियल किलर हो चुके हैं, जैसे कि रशिया में थी एक बाबा यागा करके, जो जॉन विक में नाम आता है ना बाबा यागा, वो सेम नाम की एक 78 ईयर्स की एक औरत थी, उसने 14 लोगों को मार दिया था।
क्यों?
बस ऐसे ही
मन हो गया मार
दिया। मन हो गए मार दिया। उसको तो कोई ट्रिगर पॉइंट भी नहीं मिला था। उसने जब वो उस पकड़ी गई ना, तब उसने शायद ऐसा बोला था कि मुझे ये सब शैतान ने करवाया। जैसे कि वो मूवी आई थी ना डेविल मेड मी डू इट, तो उसने भी वैसा ही बोला कि डेविल ने मुझे कहा था कि ये चीज करो तुम, तो मेरे उस लिए मार दिया, मैंने नहीं मारा है। वो लोगों को घर में काम करने जाती थी, वो बेसिकली मेड थी, तो जैसे कोई आया में रख लेता था उसे या मेड में रख लेता, फिर ना वो धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट गेन करती थी और फिर उनको ही मार देती थी। उसमें उसको मजा आता था। फिर या अगर कोई उसको ऊपर गुस्सा करता ना, तब वो ट्रिगर हो जाती थी कि उसके काम में कुछ गलती हुई है, और उस गलती को अगर ऑनर बता दे कि ये तुमने गलती की, और उस चीज पे अगर गुस्सा करे ना, तो वो उसको मार देती थी और फिर टुकड़े करती थी नाइफ से या पेन से मारती थी ज्यादा। तो जब वो सोए रहते ना, तो उनको ना एक पॉइजन टाइप देता था, टाइप दे देती थी वो, तो क्या कि उससे वो बेहोश हो जाते थे। इतना ताकत और जहर नहीं था, पर बेहोश करने के लिए काफी रहता था। फिर उसके बाद वो पेन से मारती थी और या तो नाइफ से मारती, उसके बाद वो टुकड़े करती पूरे शरीर के। 78 ईयर्स की औरत, आप सोच लो, आप सोचोगे कि 78 ईयर्स की औरत ऐसा कर कैसे सकती है, पर उसने 6-6 फुट के बंदों को मार दिया था।
वही सोच रहा हूँ मैं कि अगर अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग देख रहे थे, अगर वही सच्ची में है और इतनी छोटी लगने वाली औरत, 6-6 फुट लंबे आदमियों को मार के टुकड़े टुकड़े कर रही है।
और वो पकड़ी कैसे गई पता है? वो एक घर में काम करती थी, उसका मकान मालिक था ना, वो काफी लोगों के साथ अच्छा था उस सोसाइटी में, उस एरिया में, तो हर सुबह वो चलने जाता था। ये उसके घर में आई, काम किया, और फिर उसको इसने ऐसे ही रखा था कि तुम आ जाओ। फिर उसको इसकी हरकतें ना थोड़ी परेशान करने लगी ओनर को, तो उसने बोला कि तुम अब जाओ यहाँ से, पर वो जा नहीं रही थी, तो उसने चिल्ला के कह दिया कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, और सामान बाहर डाल दिया। तो उसने बोला कि लास्ट टाइम एक बार कॉफी पिला देती हूँ आपको मैं। कॉफी पिलाई उसको, वो पॉइजन था उसमें, बेहोश हो गया वो। जैसे ही बेहोश हुआ ना, उसको मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर उसने गलती क्या कर दी पता है? उसने जो किचन में जाके उसके टुकड़े करके डाले, वहां जो खून पड़ा हुआ था ना, उसने वो साफ ही नहीं किया। इस गलती की वजह से वो पकड़ी गई थी, क्योंकि 3-4 दिन तक ना उसका जो पड़ोसी था ना, उसको ये ओनर दिखा नहीं, तो वो देखने के लिए घर पे गया, और यहाँ पे ये औरत थी। फिर तो ये इंसान सीधा अंदर घर पे, क्योंकि अच्छे दोस्त रहते, तो वो सीधा अंदर घर में। जैसे ही घर में गया ना, तो उस किचन में वो खून दिखा है। वहां उसकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने ना इस इंसान को भी मारने की डायरेक्ट कोशिश की, पर ये इंसान जो था ना उसका पड़ोसी, वो MMA ट्रेनिंग देता था लोगों को। उसने उसको 2-3 यहाँ पे मार दिए थे कंधे पे चाकू भी, पर वो MMA का टीचर था जो लड़कों को फाइट करना सिखाता था रशिया में
ज्यादा है।
कितना वो ताकतवर रहेगा। उसने एक ही मुक्के में उसको 2 दिन तक बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो पकड़ी गई और उसको शायद फांसी की सजा भी हुई थी। और एक सीरियल किलर है, उसने तो बहुत ज्यादा लिमिट कर दी थी। इसने ना 14 लोगों को ही मारा था। नाम मेरे याद नहीं आ रहा, भूल गया नाम।
USA की थी?
नहीं, वो कोलंबिया का था।
अच्छा।
उसने ना 300 लोगों को, 300 लड़कियों को मार दिया था, 9 से 12 तक की उम्र की लड़कियों को।
क्यों? पर
बस उसके दिमाग में ना वो हवस थी,
तो वो अपना सेक्सुअली असॉल्ट करता
था। हाँ, सेक्सुअली असॉल्ट करता था। वो लड़कियों को ना किडनैप कर लेता था, उनको ना टॉफी के बहाने। और कोलंबिया में उस टाइम ना फ्लड आया हुआ था, तो उसके बाद वो पकड़ा गया था वो फ्लड के बाद ही। पर उस समय तक उसने 3-4 सिटी में ऐसा ऐसा काम कर दिया था कि लोग उसको अभी भी पेड्रो नाम था उसका।
पेड्रो?
हाँ,
अच्छा,
पेड्रो लोपेस।
हाँ, सीरियल किलर।
हाँ, पेड्रो लोपेस। उसने 300 किल किए थे, 300 लड़कियों को मार दिया था। तो उस एक शहर में उसको लगा कि ये चीज अब ज्यादा हो गई, तो उस शहर से वो कोलंबिया के एक दूसरे शहर में गया, और वहां पे जाके पुलिस ने
8 अक्टूबर 1948 को बॉर्न हुए पेड्रो लोपेस।
हाँ,
अभी 75 इयर्स का है, जिंदा है जेल में।
हाँ, तो उसने पुलिस ने भी 58 जब कब्र खोदी ना तो उसमें से काफी सारी बच्चियां निकली थी, और आखिर में पकड़ा भी गया वो पूरे दिन में जब जा रहा था।
नहीं, मार दिया 9 मार्च 1980 को मार दिया उसको।
मार दिया है शायद, उसको लिथल इंजेक्शन शायद दिया था या
लिथल इंजेक्शन दिया था। फर्स्ट अरेस्ट एज अ सीरियल किलर, किल्ड बाय अ लिथल इंजेक्शन।
हाँ, तो उसने 300 लड़कियों, ये सोचो 300 लड़कियां, और 9 से 12 साल की उम्र की ज्यादातर लड़कियां उसमें थी। वो कैसे करता था कि अगर उसने किसी को टारगेट बनाया अपना, वो उसको धीरे धीरे ना चॉकलेट देता था, ऐसे करके वो प्लानिंग करता था। फिर वो लड़कियों को अपने घर ले जाता था, और वहां पे जाके अगर लड़की बैठी हुई है, चॉकलेट उसको खिला रहे, पीछे से जाके यहाँ से कंधे से पकड़ता था। अब अगर अच्छा खासा फिट बंदा है, वो छोटे बच्चे को पकड़ के उसके ना पीठ में ना, या जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहां पे नीचे के भाग को अपने पैर से दबा के तोड़ देता था रीढ़ की हड्डी को ही। फिर ना वो चल नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, तो ऐसे मारता था। फिर उसके साथ वो गलत काम करता था, वो हड्डियां तोड़ने के बाद वो लड़कियां कितनी पेन में रही होगी ये सोचो आप। और उसने ये 300 लड़कियों के साथ ये चीज की थी। और फिर उसका जब काम खत्म हो जाता, उससे पक जाता था, तो उसके बाद वो दूसरा टारगेट पकड़ता था। ऐसे ज्यादातर उसके जो विक्टिम थे ना, वो 9 से 12 साल की ही लड़कियां थी,
मतलब जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, मारामारी नहीं कर सकते, फिर चिल्ला नहीं सकते,
वो ऐसे ही टारगेट बना। ऐसा नहीं है कि सीरियल किलर ज्यादातर उनको ही टारगेट बनाते हैं जो ताकतवर नहीं होते, वो ताकतवर लोगों को भी टारगेट बनाते। जैसे कि H.S. होम्स नाम का था, वो उसको ना सबसे पहले सीरियल किलर में कंसीडर किया जाता है।
अच्छा, वर्ल्ड का फर्स्ट सीरियल किलर।
हाँ, उनको कहा जाता है कि वो शायद सबसे पहला था। वो 1800 के दशक में हुआ था, H.S. होम्स करके। उसने ना अपना एक घर बनाया था, उसको ना किल कासल कहा जाता था, कि उसने अपना घर ही ऐसा पजल की तरह बनाया था, कि उसके घर के नीचे ना उसने एक तहखाना बनाया था जो पूरा लोगों की लाशों से भरा हुआ था। वो क्या करता था, उसने अपनी होटल ना रेंट पे देता था, और जहाँ जो जैसे ही कोई आता था उसके होटल पे रहने के लिए, उसमें ना वो रूम में उसने गैस चैम्बर लगाए हुए थे, जो किसकी गैस आती है उससे वो बेहोश हो जाते थे लोग। उसको शौक क्या था पता है, उसने ना बचपन, वो मेडिकल का स्टूडेंट था और काफी अच्छा, पढ़ने में भी काफी होशियार था वो।
उस सीरियल किलर बोला गया तो बहुत होशियार रहते हैं
उसके, उनके IQ लेवल बहुत हाई रहते हैं, वो ज्यादातर 120 के ऊपर ही रहते
हैं। कटिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट उनका IQ लेवल इतना ज्यादा रहता है, इसीलिए वो लोग मोस्टली सीरियल किलर बनने की तादाद पे आ जाते हैं, बिकॉज उनको वो कॉम्प्रिहेंड करने को नहीं आता कि उनकी बुद्धि लगाएगा।
हाँ, कि वो ना फिर उनका दिमाग ही कुछ ऐसे काम करने लग जाता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो दिमाग बहुत ज्यादा हाई पे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो वो भी रहता है। पर हमारे साइकोलॉजी के अनुसार उसकी वजह से वो होशियार तो बचपन से ही रहते हैं, और काफी सीरियल किलर ऐसे भी पकड़े गए जिनका IQ लेवल एकदम लो है, पर उन्होंने जो काम किए ना वो अच्छे अच्छे हाई लेवल IQ वालों से भी
हो जाते, हाँ।
वैसे काम उन्होंने किए।
कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, जो बोल रहा था इसके बारे में,
H.S. होम्स, हाँ, तो वो ना बेहोश कर देता था रूम में ही, फिर उनको वो ले जाता था अपने तहखाने में,
किल कैसल में।
हाँ, किल कैसल में, और अंदर ले जाता, वो पूरा होटल ही पजल की तरह बनाया हुआ। आप अगर देख लेना नेट में सर्च करके, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है ना वो दिया हुआ है नेट पे, वो आप समझ नहीं पाओगे कहाँ रूम है और कहाँ से कहाँ जाना है। वो इतना बड़ा पजल था, और उसको ही पता था कि यहाँ से कहाँ कैसे वो जा सकता है, और कैसे क्या कहाँ चीज कौन सी पड़ी हुई। उसने वो बिल्डिंग 3 बिल्डरों के पास अलग अलग बनवाई थी, ताकि किसी को पता ना चले कि ये बिल्डिंग बनी कैसे, वैसे बनाया था। और उसने शायद 80 से ज्यादा लोगों को मार दिया होगा, पर वो किस लिए पता है, उसको सिर्फ दिलचस्पी थी कि इंसान के शरीर के अंदर होता है क्या है।
डॉक्टर,
उसको ये चीज सिखाने वाला उसका ही प्रोफेसर था, जब वो मेडिकल के लिए पढ़ने गया था ना, तो उसके प्रोफेसर ने उसको ये चीज सिखाई थी कि वो ना एक्सपेरिमेंट करते थे लोगों की, पर उस समय ना 1800 के साल में ये चीज, ये सब साइंस की तब इतनी वो नहीं थी, एक्सपेंड नहीं,
एडवांसमेंट
हाँ
नहीं है।
एडवांसमेंट नहीं, तो उस समय ना लोग अपनी बॉडी डोनेट नहीं करते थे डॉक्टर्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसकी वजह से ना ये लोग कब्रें खोदते थे लोगों की, जो मरे हुए ताजे लोग होते अभी अभी जो मरे उनको गाड़ते, उनको काट निकाल लेते थे।
इसीलिए लाशें चोरी होती थी
हाँ
1800 में। अच्छा,
वो इसलिए होती थी ताकि
और ये
उनके
डॉक्टर लोग फिर पैसे देके लाशें खरीदते थे।
हाँ नहीं, ये खुद जाते थे दोनों, उसका प्रोफेसर और एचएस होम्स, होम्स और उसके प्रोफेसर थे, उसका भी नाम हेरोल्ड के ऐसा ही कुछ था, हेरोल्ड के ऐसा ही कुछ है, वो दोनों जाते थे और दोनों कब्रों में से लाशें निकाल लेते थे और उन पे एक्सपेरिमेंट करते थे। पर उसमें से कुछ लाशें ना होम्स अपने घर ले आता था, फिर वो क्या करता था कि उनको जैसे उनको देख लिया, फिर उनको एक पूरी स्टोरी बनाता था, वो उनके ऊपर स्टोरी बना के ना वो फिर उनके ऊपर जो लाइफ इंश्योरेंस होता है ना
हाँ
वो बनवाता था और उसके पैसे वो अब खुद ले लेता था। ऐसा नहीं था कि वो
एच
गरीब
एच
था।
होम्स है कि एच एस होम है?
एच एच
हाँ, ये फोटो आया
हाँ मूछे
उसका,
वाली
मूछे
होगा
वाला।
टोपी, वो अच्छा खासा रईस परिवार से था वो, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी पर वो करता था ऐसा, और उसने वो पकड़ा भी इंश्योरेंस फ्रॉड की वजह से गया था।
जो फ्रॉड कैसे? हाँ
वो जो लोगों को मारता था ना, अब
हाँ
सब बॉडियों को तो अपने बिल्डिंग में नहीं रख सकता था वो,
हाँ
तो वो ना इंश्योरेंस उनके नाम पे करवा के वो पास करवा लेता था, क्योंकि वो डॉक्टर था तो वो पास करवा सकता था इंश्योरेंस। वो दूसरा नाम रख देता था बॉडी का, खुद नाम रखता था वो बॉडी का, और उनके बॉडी पार्ट जो निकाले रहते थे ना उनको भी वो नाम देता था, वो अपने पास रखता था और खाली बॉडी जो रहती ना वो दे देता था। फिर उनके वो इंश्योरेंस लेके, इंश्योरेंस के पैसे लेके उसने काफी सारा पैसा कमाया ऐसी तरीके से। फिर फाइनली लोगों को पता चला कि ये चीज कुछ गलत हो रही है, पर वो जब पकड़ा गया ना तो उसने कुछ येटीज नाम का कोई परिवार था, ये सरनेम मुझे पका नहीं पर वाई वाई के ऊपर से आती है उनकी, तो उनके पूरे परिवार को उसने उठवा लिया था
पूरे
पूरे, और वो जिंदा लोग थे। फिर वो इतना लेवल तक चला गया था कि अब मुझे जिंदा इंसानों को काट के देखना है, जिंदा लोगों को, कि क्या होता है उसके, कैसे दिल धड़कता है, कैसे खून निकलता है, खून गर्म होता है या ठंडा होता है इंसान का, जब काट देते हैं तो कितना जल्दी बाहर निकलता है, वो सब चेक करने के लिए वो लोगों को मार देता था। मेरे पास काफी ऐसे किलर है जो आप अगर सुनोगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा।
नहीं, आज तो वही डिस्कस करने वाले। तो
फिर औरतों में सबसे खतरनाक अगर सीरियल किलर रही हो ना तो एलिजाबेथ करके थी,
हाँ जी,
एलिजाबेथ बोरथोक करके थी एक,
हाँ
वो
हाँ
राजकुमारी थी,
प्रिंसेस थी
हाँ प्रिंसेस थी,
कहाँ
और
की?
वो 16वीं सदी में थी,
अच्छा।
वो शायद फिनलैंड की वहीं की कहीं थी, और वो काफी बड़ी रिच फैमिली जो किंग्स वाली होती है ना उसकी प्रिंसेस थी। फिर उसको ना एक लड़का देखने आया था, राजकुमार देखने आया था, तो उस राजकुमार ने ना उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखती नहीं थी, उसकी फेस ना थोड़ी लुक डाउन था, तो वो राजकुमार अच्छा दिखता था तो उसने उसका मजाक उड़ा दिया कि ऐसी लड़की से शादी करूं, इससे तो अच्छा इसकी जो दासी है वो अच्छी लग रही है मुझे, मैं उससे शादी कर लूंगा, इससे क्यों करूंगा। तो फिर ना उसका गुस्सा फट गया, सीरियल किलर का दिमाग तो पहले से ही रहता है, पर वो ना मैंने बोला ना कि जैसे ट्रिगर पॉइंट होते,
ब्रेकिंग पॉइंट बोल सकते हैं,
हाँ
ट्रिगर
कि
पॉइंट बोल
उनका
सकते
वहां
हैं।
से वो ब्रेक हो जाता है और वहीं से वो चालू कर देते हैं अपना काम। फिर उसने ना जो अपने उसके एरिया में जितनी भी उसके एज की लड़कियां थी ना उन सबको बारी बारी से उतना टॉर्चर करती थी, जो वो ऐसे एक टॉर्चर करके ऐसा आता था लकड़े का बना हुआ था,
टॉर्चर का मतलब ऐसा जो
लकड़ी का बनाया हुआ रहता था वो, पहले का जमाने में वो ऐसा यूज करते थे लोगों को बातें निकलवाने के लिए, वो उन या जिन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया होता ना उसको लकड़ी पे बिठा देते थे, उनके हाथ पैर वो
इट्स
लकड़ी पे ऐसे हाथ बांध देते थे
हाँ,
और उस पे उनको बिठा देते थे, हाँ
एक्स शेप में बोल रहा है तू?
एक शेप में इंसान को बांध देते थे,
हाँ,
और
तो
फिर
आजकल
जो
वो तो BDSM को यूज
ये तुम अपना अलग एंगल डाल रहे हो, फिर
करते
ये तुम्हारी सोच अलग है।
हैं।
वो पूरा नुकीला होता था, तो उसके ऊपर बिठा देते थे, तो
समझा,
तो उससे पूरा धीरे धीरे इंसान फट जाता था, पूरा दो टुकड़ों में बट जाता था, उसकी वजह से उतना शार्प रहता था।
खींचते थे,
हाँ, फुल टाइट बांध देते थे, हाँ, फिर हाँ। वो धीरे धीरे वो ऐसे घुमाते थे, तो उसकी वजह से ना वो जो होता था ना वो ऐसे साइन वो ऊपर जाता था, और धीरे धीरे इंसान फटेगा, क्योंकि वो टारगेट ही ऐसे करके रखते थे। ऐसे करके उसने ना वो पहले लोग जो लड़की आती थी ना उनको पकड़वाती थी, क्योंकि राजकुमारी थी, किसी को भी पकड़वा सकती थी वो लड़कियों को, खूबसूरत जो लड़कियां रहती थी उनको ही पकड़। फिर उसका ट्रिगर हो गया था कि अगर मैं सुंदर नहीं हूं ना तो जितने भी यहाँ इस राज्य में सुंदर लड़कियां मैं सबको मार
दूंगी।
तो उसने वो लड़कियों को पकड़ के लाती थी, फिर गरम तेल करवाती थी, जो ऑयल होता है ना वो गरम करती थी, और फिर ना उसके मुंह पे छींटे डालती थी वो बैठी बैठी, ताकि उसका फेस खराब हो जाए। अगर किसी और पूरी बॉडी अच्छी है किसी लड़की की, पूरा फेस से लेके पूरा लुक एकदम अच्छा है, तो वो पूरे तेल में उसको भिगो देती थी, गरम तेल में। फिर उसके जिंदा रहती, क्योंकि पूरा इंसान मर तो नहीं जाएगा, सिर्फ चमड़ी जलती है उससे तुरंत, तो कुछ लोग मर जाते हैं पर कुछ लोग जिंदा रह जाते हैं।
जिनको ट्रॉमा पड़ता है वो तो मर जाए, हाँ। जिनको नहीं पड़ता है
फिर
वो...
अगर वो जिंदा रहते तो फिर उनके उनको उस सूली पे चढ़ाया जाता था। अच्छा। वैसे करके उसने 650 लड़कियों को मार दिया था, 650।
और ये साजिश अकेले ने नहीं की थी,
नहीं, उसके वहाँ सब साथ थे, और उसको कुछ किसी ने किया भी नहीं, वो अपनी लाइफ ठीक से जी, हाँ, उसकी शादी नहीं हुई कभी भी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि ये क्या करती है। उसके साथ कभी किसी ने शादी नहीं की, उसको करनी थी शादी पर उसके साथ किसी ने नहीं की,
नहीं, किसी कर्मा हिम्मत भी नहीं होगी, हिम्मत भी नहीं होगी, हाँ, कौन करेगा
इसके साथ, कौन
इसके
करेगा
शादी करेगा, ऐसा सोच के
कोई भी नहीं करेगा। बोले तो उसका कर्मा भी उसको सामने आ गया ना, कि तुझको जो करना है वो अब तेरे साथ नहीं होगा, तेरे तूने जो गलत किया उसका तुझे भी गलत भुगतना पड़ेगा।
नहीं बट अभी ये तो रजिस्ट्रेशन में ऊपर वाला लिख के लेगा भाई, हाँ, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा तेरे को।
तो उसको तो उसी जन्म में मिल गया था, उसको शादी करनी थी राजकुमार से अच्छे,
एक सजा मिली उसने, 650 जिंदगी खाई है,
तो वो कितनी जिंदगियों तक वो उसको भुगतना पड़ेगा, ये सोचो। तो उनके ना कुछ सीरियल किलर ना बचपन से उनके साथ वो दिमाग में तो आता ही है, साथ में वो पैदा ही इसके साथ होते है, ऐसा नहीं रहता कि उनको मारा जाता है या उनके साथ कुछ हैरेसमेंट हुई उसकी वजह से वो सीरियल किलर बन गए। सीरियल किलर वो तो बचपन से ही होते, पर उनके ना कुछ ट्रिगर पॉइंट होते, जैसे कि माँ का मर जाना, या गर्लफ्रेंड का छोड़ के चले जाना, या बाप का बहुत शराब पी के मारना, वो ना उनका दिमाग तो पहले से कमजोर तो उस बात में रहता ही है, पर वो चीज जब ट्रिगर होती ना तो वो खुल जाता है पूरा, और उसके बाद ही वो ये सब चीजें करते। मेरे साइकोलॉजी जब जितना मैंने सीखा है, मैं गलत कुछ चीजों में हो भी सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने PhD की है उसमें, पर मैं गलत हो तो, पर मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है ना तो वो ऐसा होता है, और वो ऐसे ही सीरियल किलर बनते हैं,
जो हम लोग साइकोलॉजी में ट्रिगर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, जो ब्रेक थ्रू आ जाते हैं, और कुछ ब्रेक थ्रू तुम लोग को बेनिफिशियल रहते, कुछ ब्रेक थ्रू तुम लोग को सीरियल किलर्स में कन्वर्ट
कर सकते। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा कमजोर है ना तो तुम हो सकते हो
इमोशंस,
हाँ, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता फिर उसके बाद इंसान का, और उसकी वजह से ना वो थोड़े पागल तो हो ही जाते हैं, फिर उनको इस चीज में जैसे कि मजा आने लगता है। जैसे कि मेरी बात कर लू कि
सेडिस्टिक बन जाते, इंग्लिश में सेडिज्म बोलते हैं इसको,
हाँ,
जो दूसरों को मार के मजा लेते
कि कुछ है ना, कुछ चीजों कुछ जैसे कि हमको पहली बार हम जैसे कार चलाते या बाइक चलाते तो हमको अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग आती है, हमको रात को नींद भी नहीं आती कि हमने कुछ नई चीज ली हो, तब नींद नहीं हमको आती कि हमने काफी मेहनत की उसकी वजह से और चीज आई है, तो नींद नहीं आती। काफी लोगों के साथ ये चीज होती है साइकोलॉजी के अनुसार, ये चीज होती है कि उनको जो चीज बहुत पसंद होती है वो जब आती है, बाद में धीरे धीरे वो कम हो जाता है, पर वो जब आती है ना तब इंसान झकता है, और उसके अंदर ना काफी केमिकल होते हैं, वो फटते हैं इंसान के अंदर, और उसकी वजह से वो सो नहीं सकता, उसकी वजह से उसको मजा आता है। तो वही चीज उनके साथ यही होती, पर वो जब इंसान को मारते तो उनको ये चीज होती,
डोपामिन और सेरोटोनिन,
हाँ, बस डोपामिन उनके शरीर में ज्यादा रन करने लगता है, उनको इस चीज में ही मजा आने लगता है, कि वहाँ ये चीज करनी है, इसमें मजा आ रहा है, तो साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा होता है। चलिए वापस थोड़ा लाइट करते हैं वातावरण को, अभी थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया।
नहीं डार्क नहीं, वैसे मतलब जो ऑडियंस इधर आएगी ना
वो तो वही
वही ऑडियंस देखने का, तो ऐसे तो हम लोग जबरदस्ती तो कर नहीं सकते।
अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वही वीडियो डालू, घोस्ट वाली वीडियो तो मैं डालने ही वाला हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ मैं इसी जनरा में काम करूँ कि लोगों को असलियत दिखानी है। मैं हीरो नहीं साबित करूंगा, अगर वो गलत है तो गलत बोलूंगा ही बोलूंगा, उनको मैं हीरो साबित करने के लिए मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, वो इंसानों को दिखाने में के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये चीज गलत हो रही है। अगर तुमको कुछ लग रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाओ। आज सबकी दवा है, सब चीज की दवा है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो वो ठीक हो सकती है, तो दिखाओ अगर तुमको लगता है तो। पर अगर तुम ना कुछ ना, लोग डरते कि हमको लोग पागल करार कर देंगे अगर हमने ये चीज बोल दी तो।
समाज का फियर उन लोगों में ज्यादा रहता है,
ज्यादा रहता है वो, ज्यादातर ना वो लोग ऐसा बोलते कि बचपन में काफी इंट्रोवर्ट थे। सीरियल किलर सबसे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सब बचपन से लेके जो जब तक वो पकड़े जाते हैं या कुछ हो जाता है उनके साथ, वो आपके साथ ऐसे बात करेंगे आपको लगेगा कि यही अपना इंसान है और इसके अलावा सब झूठे।
मैनिपुलेशन स्किल होती है,
बहुत अच्छी होती है, और वो बचपन से ही उसके किसी इंसान को वो किसी के पास से सीखते नहीं ये चीजें, ये उनको बचपन से मिली हुई होती
है। वो ट्राई और टेस्ट कर लेते हैं।
हाँ, कि उनको ये चीज अंदर से ही आती है कि पहले वो छोटे थे तब इंट्रोवर्ट थे। स्टोरी में ऐसे ही नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आती है वो ऐसे ही होती है कि बचपन में बहुत अच्छा लड़का था, फिर उसके साथ ऐसा हुआ तो फिर ऐसा, ऐसा होता नहीं है साइकोलॉजी के अनुसार। वो बचपन से उनके साथ वो रेडीमेड आते हैं उसके साथ, पर सिर्फ ट्रिगर होने के बाद वो चालू कर देते हैं अपना काम। तो वैसे ही है कि अच्छे वो बचपन से होते ही नहीं, उनके दिमाग में वो शैतान तो बैठा ही हुआ रहता है, बस ट्रिगर का इंतजार था उनका, उस शैतान को कि तुम मुझे कुछ ट्रिगर मिल जाए और मैं बाहर आ जाऊं। जैसे कि जॉन वेन गेसी था,
ये कौन था,
ये जिसके, जो आपने पेनीवाइज मूवी देखी है?
हाँ जी,
पेनीवाइज मूवी इंस्पायरी जॉन वेन गेसी से उभरी हुई।
अच्छा,
जैसे कि वो छोटे बच्चों को उठा लेता था और मार देता था। जॉन वेन गेसी को किलर क्लाउन कहा जाता है।
अच्छा, वो क्लाउन के ड्रेस में,
हाँ, वो क्लाउन का ड्रेस पहनता था और वो पॉलिटिशियन था न्यूयॉर्क में। फिर उसने ना, वो था बायोसेक्सुअल, तो उसने ना एक जो उसका साथी था उसके बेटे के साथ कुछ जबरदस्ती की, तो उसने लड़के ने ना अपने पिताजी को बता दिया कि मेरे साथ इसने ये चीज की, तो उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई और उसको न्यूयॉर्क कोर्ट में सजा मिली 8 साल की, पर उसको ना 2 साल में छोड़ दिया गया क्योंकि ना उसके वो बहुत मैन्युपुलेशन करता था, सबके साथ बहुत अच्छा रहता, दो साल में वो छूट गया। फिर उसको लगा कि अब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ पे सबको पता चल गया कि मैं कौन हूँ। उस 1978 के साल में ये सब होना, बायोसिक्यूल काफी वो गलत माना जाता था क्योंकि उस टाइम ना चर्च वो बहुत लोग मानते थे, तो उसमें वो चीज गलत बताते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो वो फिर अपने सिटी में वापस आया और उसने दूसरी शादी भी की, अपनी माँ के साथ रहता था, और उसको उसने बता दिया कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे लड़के भी पसंद है और लड़कियां भी पसंद है। पर उसका मेन जो टेस्ट था ना वो लड़कों में ही था, जो छोटे लड़के रहते ना उनको, उसको वही पसंद आते थे। तो फिर वो अपने सिटी में आया और वो क्लाउन बन के जाने लगा बर्थडे पार्टीज में, या कोई कुछ अपने घर पे होता तो उसको बुला लेते। फिर वहां वो बच्चों को टारगेट करता था कि ज्यादातर बच्चे कौन से अकेले रहते हैं और उसके साथ कौन खेलना पसंद करता है। तो उसने ना 33 बच्चों को मार दिया था।
33?
हाँ, वो उसको बच्चों को ना चॉकलेट देता था, उसमें कुछ केमिकल मिला देता, उसका नाम मैं भूल गया, या बेहला फुलसला के वो अपने घर ले जाता था उसको, फिर उनको उनके साथ गलत काम ऑब्वियसली करता था, और उसके बाद वो उनको मार के अपने घर के नीचे बना हुआ बेसमेंट था उसका, उधर ही गाड़ देता था वो। और वो जब बाहर आया ना, उसके ऊपर काफी फिर रिलेटेड मूवी बनाई लोगों ने उसको कॉपी करके, अभी जो जोकर का जो जोनरा चल रहा है ना, जो भी हॉन्टेड जोकर, वो सब उसी जॉन वेन गेसी से ही इंस्पायर है।
जॉन वेन गेसी
उस पे नेटफ्लिक्स वालों ने सीरीज भी बनाई है।
क्या नाम से?
जॉन वेन गेसी।
यस, मिल गया।
देखो तुम उसका, उसकी हंसी देखो सिर्फ, जो क्लाउन वाली हंसी है ना।
हाँ जी, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सुगाई
डाल देना। मैंने उस पे शॉर्ट बनाया था क्योंकि वो ना उसी के बाद जोकर मूवीज जो आई है ना, हॉरर जोकर मूवीज, वो सभी ज्यादातर इसी से ही इंस्पायर है। पेनीवाइज तो इसी पे ही इंस्पायर है, ये तो पक्का है।
पोगो द क्लाउन, नाइसेस्ट गाय विद द हाउस ऑफ हॉरर्स।
हाँ, उसका, उसके घर का जो भी ब्लूप्रिंट था, वो भी मैंने मेरे शॉर्ट्स में डाला था कि वो कहाँ लोग बच्चों को गाड़ता था।
आई एम पोगो द क्लाउन, उसके बैच पे लिखा है उसने।
हाँ,
बाप रे,
वो जब पकड़ा गया ना, तो आप देखना उसमें लिखा होगा, गाली तो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे।
नहीं, यू कैन।
उसने पुलिस को, जब जज को बोला था कि जज ने जब उसको सजा सुनाई लिथल इंजेक्शन की, तब उसने पुलिस, जज को और पुलिस को बोला था कि किस माय आस, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि उसको मौत की सजा मिली, फिर भी उसने वही बोला था जज को भी कि किस माय आस, मेरे को कोई फर्क नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज पे कि मैंने ये चीज की हुई है।
गेसीज आईक्यू स्कोर वाज 118। 118, इट्स मोर देन।
वो पॉलिटिशियन था न्यूयॉर्क का।
पॉलिटिशियन तो इसको क्या हो गया?
तो पॉलिटिशियन ऐसे तो नहीं बनेगा, उसका दिमाग तो अच्छा रहेगा, वही पॉलिटिशियन बन सकता है।
वही बोल रहा है ना मैं।
और जो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। पर वो कहता था ना, उसको जब, उसका जब इंटरव्यू आया था, तो वो बोलता था मुझे ना मेरे पापा बहुत मारते थे, शराब पीते थे उसके पापा, तो उसको बहुत मारते थे, तो मैं उसकी वजह से इस गुस्से में था। तो तेरे पापा तेरे को मारते थे, बच्चे थोड़ी तेरे को मारते थे, तो तूने गुस्सा अपना बच्चों पे क्यों उतारा? ये चीज
वैलिड है।
हाँ,
पूछने के लिए
क्यों उतारा, वो चीज उसको पूछी नहीं गई, बस ये उसने बोल दिया कि मुझे ये गुस्सा था, वो लोगों, न्यूज वालों ने छाप दिया, पर उसका वो रीजन नहीं बताया कि ये बचपन से ही उसका दिमाग ऐसा है, उसको पहले से ही लड़के पसंद थे, पर वो डरता था कि अगर किसी लड़के ने बता दिया किसी को, तो मेरी जो सिटी में और मेरे शहर में जो वैल्यू है ना, वो खत्म हो जाएगी और लोग मेरे पे हंसेगी, उसकी वजह से वो लोगों, बच्चों को मार देता था। तो वैसे ही रीजन होते एक, जो एक सीरियल किलर बनाते हैं।
तेरे को जो रिसेंटली अभी जो रोगन पॉडकास्ट पे एक बंदा आया था, तो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, मैं बताता तेरे को। हाँ, तो उसका सीन ऐसा हो गया था कि शेल्डन जॉनसन करके, ठीक है, बंदा आया, पॉडकास्ट चला गया करके, शेल्डन जॉनसन, एंड सीन ऐसा होता है कि बंदा घर पे जाने के बाद पीपल स्टार्ट डाउटिंग कि कुछ घर पे हो रहा है, मारने की आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है, तो बंदा वीक वीक पहन के सूटकेस लेके बाहर पड़ता था। वो जो रोगन के पॉडकास्ट पे आ गया था।
हाँ,
एंड भाई सूटकेस लेके बाहर आ रहा है, डब्बा लेके बाहर आ रहा है, बड़े बड़े डब्बे लेके बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दो जन मिसिंग जाते हैं और उसके सीसीटीवी में चेक करते हैं। तो जैसे सीसीटीवी में चेक करते हैं, ही वॉज देयर, बंदा दो चार वीक पहले पॉडकास्ट पे आके गए।
हाँ,
और दो चार वीक के बाद ही इज इनसाइड जेल, पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसका खुलासा हो जाता है कि भाई
ये
मार दे रहा है लोगों को,
सीरियल किलर
है, और बहुत गंदी के तरीके से मार रहा था लोगों को, किसी का फेस नहीं था, किसी
जोरोगन के शो पे आया था।
अरे हाँ, मैं दिखा
वो बंदा
मैं दिखा था ना, शेल्डन जॉनसन, डेंजर भाई, डेंजर।
और वो किस जॉनरा को लेके आया था?
शेल्डन जॉनसन, ये देखिए, जो रोगन ने निकाला है नहीं निकाला है मेरे को पता नहीं, मेरे को पॉडकास्ट में
शायद डिलीट कर दिया होगा ना, अगर
मोस्टली डिलीट कर दिया रहेगा,
ऐसा हुआ है तो शायद डिलीट कर देगा।
गाइस दिस इज द गाय, दिस इज द डूड, ये फोकस, ये बंदा है गाइस, ये बंदा है, ये बंदा आया था, फोकस, ये देखिए बंदा आया था पॉडकास्ट पे।
हाँ इस बंदे को देखा लगता है मैंने कहीं पे।
He was talking about jail scenarios only. तो decided, और वो बात भी उसने एक क्लिप भी डाला है, sentence to 50 years of life around him, मतलब उसको सजा हुआ था पहले भी।
अच्छा, तो बाहर आके सुधर गया था, फिर वापस चालू किया उसने,
उसको वो ब्रेकिंग पॉइंट की तरह तो हो गया रहेगा बीच में,
हो गया ही होगा
कुछ तो झगड़ा वगैरह का, मेरे को पूरा स्टोरी पता नहीं, बट
अगर वो पहले से कर रहा है ना तो उसने पहले भी वो चीज किया ही होगा, पर वो सामने नहीं आया होगा लोगों के, बाकी उसने किया तो हो गया ही होगा। जैसे कि ये एचएस होम्स का मैंने बताया, वो उसके माँ बाप को भी ये चीज पता थी कि वो ना जब पढ़ रहा था छोटे स्कूल में था, जब वो स्कूल में था ना, वो जानवरों को लेके आता था, मेंढक को मुर्गी को, वो अपने घर पे लाके जो
मारता था और
खोल डालता था, उसके घर पे भी ये चीज पता थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे,
ऐसे ऊपर ऊपर से देख लिया
कि बच्चा कुछ कर रहा है, पर ये नहीं देखे कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। जानवर, जिंदा जानवरों को काटना मतलब कोई छोटी चीज तो है नहीं,
जिंदा जानवरों को,
हाँ जिंदा जानवरों को काटता था,
उसको ये हो गया रहेगा कि लाइक वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता,
कुछ कर सकता हूँ। फिर ना उसी के बाद ये सिर्फ वो ये सब उसको जज्बा, वो बचपन से ही उसको था कि ये सब चीज करना है, होशियार तो वो पढ़ाई में पहले से था, उसके पास डॉक्टर की डिग्री थी, उसने नाम ना शायद उसने 8-9 बार तो अपने नाम चेंज किए और 3 बार शादियां की थी होम्स ने, पर एक ही शादी उसने की थी जो उसकी स्कूल फ्रेंड थी उसके साथ जो शादी की थी वही लीगल थी, बाकी दो की ना वो सब दोनों फेक कर दी थी उसने, उनको नाम भी उस लड़कियों को गलत बताया था, सब कुछ उसके बारे में।
बेसिकली एक एक ट्रेट मैंने कॉमनली बहुत देखी है, मैनिपुलेशन, ये ट्रेट बहुत रहती है,
रहती है उसमें,
इजीली मैनिपुलेट कर सकता है किसी को भी, कोई भी मतलब किसी का भी आइडेंटिटी लेना, किसी को आइडेंटिटी देना, किसी को
सब कुछ कर सकते हैं,
मतलब वो दिमाग के साथ खेलते रहते
बहुत रहते, इसलिए लोग मैं बोल रहा हूँ ना कि उसमें बोल देते न्यूज वाले कि पहले तो इंट्रोवर्ट था, या सीरीज वेब सीरीज में दिखा देते कि पहले तो बहुत इनोसेंट लड़का था या इनोसेंट लड़की थी, फिर वो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर वो सीरियल किलर बन गया, उसके दिमाग पे असर, पर वो असली चीज दिखाते नहीं कि उनके दिमाग में वो पहले से ही वो चीज है, बस वो चीज ट्रिगर हुई है जो उनके साथ हुआ है उसके, तो वो नहीं बताया जाता उसमें, वही बताया जाता है कि नहीं इसी की वजह से वो सीरियल किलर बना।
अभी जॉनसन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, शेल्डन जॉनसन जो पॉडकास्ट पे आ गया था, वो अरेस्ट हो गया मार्च में, मतलब यही महीने में हो गया,
पिछले महीने में,
यही महीने में हो गया था, लास्ट मंथ में, और उसके पास मर्डर, मैनस्लॉटर, क्रिमिनल पोजिशन ऑफ वेपन, कंसीलमेंट ऑफ ह्यूमन कॉर्प्स, मतलब एक जन को नहीं मारा, मल्टीपल लोगों को मारा, फ्रीजर में डाल के उस एक एक का मुंडी था फ्रीजर में,
वो ये काफी सेम है ऐसे सीरियल किलरों में काफी, देखो ये होम्स भी ये चीज करता था, फिर ये तमारा थी जो मैंने बोला कि बाबा यागा करके,
बाबा यागा
उसका असली नाम तमारा था, तो वो भी ये चीज करती थी, और काफी और भी थे जो जॉन वेन गेसी है, वो तो पूरी बॉडी को ही रखता था अपने पास, तो वो उनको शायद मजा आता है कि अपने पास रखे चीजों को काटे, तो वो अपने पास ही ज्यादातर रखते, और उसके वजह से वो पकड़े जाते
हैं।
ये जो मैंने बताया ना पेड्रो करके जो कोलंबिया में हुआ था 300 लड़कियों, वो 300 तक पकड़ा क्यों नहीं गया पता है, क्योंकि वो उसने एक बॉडी भी अपने पास नहीं रखी थी,
तो कैसे किधर रखता,
वो गाड़ देता था
अच्छा
कब्रों में और नई कब्र बनाता था वो उस इंसान की,
मतलब और असली कब्र,
हाँ, असली कब्र बना देता था वो इसकी प्रॉपर तरीके से, और 58 कब्र मिल गई थी लड़कियों की पुलिस वालों को, और बाकी तो दूसरे सिटी में किए थे तो वो तो, पर टोटल 300 लोगों को मारा था उसने, तब तक उसकी वजह से ही वो नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो लाशों को नहीं रखता था और बाकी सब पकड़े।
मेरे ऐसे दिमाग में अपने गलती से आइडिया दे दिया किसी को कोई भाई, मेरे को वो आ गया कि ऐसा होना नहीं चाहिए।
नहीं नहीं नहीं,
बट अगर किसी ने किसी को मार दिया जंगल वंगल में और अगर मुस्लिम रहेगा तो मुस्लिम की जो ताबूत रहता है उसे वही डाल दिया और उस पे लिख दिया, कुछ लिख दिया तो लोग भरोसा मान लेंगे,
मान लेंगे,
उसको पैर भी पड़ेंगे।
हाँ, पड़ेंगे।
ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए।
ये चीज गलत है, इंसानों को मारना कोई अच्छी बात नहीं
है,
जानवर को भी मारना। मैं तो प्योर वेज हूँ,
मैं भी वेजिटेरियन। हाँ। मैं नॉन वेजिटेरियन था, मैं वेजिटेरियन बन गया।
मैं तो पहले से ही वेज हूँ।
हाँ।
क्योंकि मेरे घर में ना कृष्ण भगवान को बहुत मानते
मैं। हाँ, भाई पॉडकास्ट होने पे बहुत कुछ बोलने वाला। हाँ। कुछ कुछ दिखाई दे रहा है।
मेरी मम्मी लाला जी को रखती है और हर रोज उनको खाना खिलाने के बाद ही हमको खाना मिलता है, तो मैं तो पहले से ही प्योर वेज रहा हूँ। तो जानवर को भी मेरे हिसाब से मारना गलत बात है क्योंकि उसकी भी आत्मा तो है ना।
किसी को भी मारना।
हाँ।
किसी कोई जो जी रहा है, जी रहा है, जो सांस ले रहा है या फिर जो हिल रहा है,
तो ईश्वर का वो स्वरूप है। हमारे में तो कहा गया है कि मैं हर जगह पे हूँ। हाँ। हर जीव में हूँ
मैं, हर, तो मैं ही परमात्मा हूँ।
हाँ, अगर आप किसी चीज को मार रहे हो तो आप भगवान को भी मार रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं, मैंने जहां तक पढ़ा है किसी धर्म ने, धर्म में ये नहीं लिखा है कि किसी बेगुनाह को मार दो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो या चाहे क्रिश्चियनिटी।
वध करना और हत्या करना, इसमें फर्क बताया गया अपने हिंदू। हाँ। वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये कहा गया है, वध करना किसको बोलते हैं, जो बुराई का अंत करता है उसको वध करना बोलते हैं। हत्या करना जो खुद के स्वार्थ के लिए किसी को मार
देना,
वो पाप है,
वो पाप।
वध करना जस्टिफाई हो जाता है धर्म,
वो तो सभी धर्मों में मनाई है, पर लोग कुछ ना समझते। वो अपने आप का, वो इस वीडियो में भी अपना देंगे कि ये होता है इसमें, यहाँ पे ये लिखा है। अरे पर भाई, वो उस पे तुम प्रॉपर रिसर्च करके बोलो कि क्या ये लिखा है। मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो वो फिर ना धर्म वाली बात हो जाएगी।
नहीं नहीं, बोल देना।
पर इस्लाम में भी लिखा गया है कि अल्लाह ने कहा था कि जो भी जीव है वो मैंने बनाए और हर जीव में मैं भी हूँ, जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था, वैसे ही उन्होंने भी यही चीज कही थी कि सब मेरा ही बनाया हुआ है और सब मेरा है और सबको जीने का एक बराबर हक है। वो आयत भी शायद मुझे याद थी, 5 या कुछ ऐसा है, मैंने वो पढ़ा था। वो चीज मैं रिसर्च कर रहा था इस चीज पे कि इस्लाम में ये चीज, कुछ लोग बोलते थे कि ऐसा लिखा नहीं है, तो मैंने इसलिए देखा था, मैंने एक कमेंट में देखा, तो मैंने उस देखा तो वो चीज रियल है, वो लिखी हुई वो आयत है कि किसी को भी मारना गलत बात है।
अभी देखते थे, तू कंटिन्यू कर ले, मैं तब तक देख लेता। हाँ,
तो उसकी वजह से ना लोग अभी की कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी। अरे इंसान को ऊपर वाले ने कितना खाने के लिए दिया है, कुछ भी खा लो आप। आज के जमाने में कौन सी चीज नहीं मिल सकती आपको वेज में? आपको अगर स्वाद चाहिए
2046 फियर नॉट, आई एम विद यू, योर आई सी, आई एम एवरीथिंग
लिखा है ना,
2046
वो देख सकते हो आप। अगर आपने सही से कुरान पढ़ी है तो आप भी नहीं मारोगे किसी को। और आपने अगर गीता सही से पढ़ी है तो आप भी नहीं मारोगे। हिंदू भी काफी खाते ही है, मुस्लिम तो उनको तो वहां उसके धर्म में अभी वो तो नॉर्मल है तो वो खाते ही है।
वो क्यों खाते थे? क्योंकि इस्लाम ये रेगिस्तान से बना है,
तो रेगिस्तान से
घास फूस और सब्जी नहीं होती थी,
तो उनको वो गुजारा करने के लिए वो खाते ही थे। तो पर वो अभी वो कंटिन्यू करने की चीज नहीं है, अभी वो चीज छोड़ सकते क्योंकि अभी वो चीज मिल रही है सबको। तब नहीं मिलती थी तब खा रहे थे, वो बात ठीक है। जब हमको भी नहीं मिलती थी तब खा रहे थे, वो भी ठीक हो सकती है। पर शिकार तो हमारे में भी होता था, राजा दशरथ भी शिकार करने गए थे, पर वो चीज गलती तो की हुई ना, और उसका उनको भुगतान भी करना पड़ा।
बट शिकार करके उनको खाते नहीं,
खाते नहीं थे वो शिकार करके, पर वो जीवत्या तो थी ना, किसी जीव, किसी का जीव तो, और उसकी सजा उनको मिली थी क्योंकि वो शिकार करते थे। हमारे धर्म में वो मनाई है, कि कोई क्यों श्रवण को ही लगा बाण, हिरण को क्यों नहीं लगा, उनको क्यों ऐसा लगा कि वहां पे हिरण ही है, उनके उनके कर्म ही उन्होंने तीर वो छुड़वाया ना, तभी उस वक्त इंसान को लगा।
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है बिकॉज श्री कृष्ण को भी तीर लगा था, प्राण दे दिए थे, क्योंकि
वो तो उन्होंने बताया था,
क्योंकि मैंने जस्टिफाई दिया है, जस्टिफिकेशन दे दिया, बलि को मैंने मार दिया था, राजा बलि को मार दिया
था, तो गलत किया था
उन्होंने। हाँ, वानर राजा बलि,
हाँ, तो उन्होंने छुप के मारा था जब भगवान श्री राम थे तब, तो वो चीज उन्होंने, उनके कर्म भगवान खुद अगर भोग रहे अपने कर्म, तो हम तो हमारा आप तो इंसान है, अपन को नहीं छोड़ेंगे ये कर्म, चाहे 7 जन्म तक हम ये गलती अगर करें ना, तो ये चीज हमारे साथ होगी होगी और होगी, ईश्वर सब देख रहा है ये चीज। अगर आप किसी बेचारे जीव को अच्छा समझ के, या ओ हमको तो बहुत मजा आता है ये चीज खाने में, पर ये चीज तुम कर रहे हो तो ये तुम गलत कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये चीज होगी, अगर ये चीज से भी अगर तुम, हम लोग दोनों बता रहे, उससे भी अगर फर्क ना पड़े तो एक बार गरुड़ पुराण पढ़ लेना एक बार पढ़ लेना अगर दिल से, ये लोग छोड़ देंगे खाना जब उनको पता चल गया कि क्या क्या
खाना। अरे मैं बोलता है भाई, औरत के पास जो आंख उठा के देखते हैं ना, वो भी बंद हो जाएगा।
वो चीज एक बार पढ़े तो उनको, उनको धर्म का कुछ पता ही नहीं है। हाँ, ज्ञान दे देंगे कि तुमको क्या पता है, तुम कौन से पंडित हो,
जो भी इस तरह के हेल मतलब, हाँ, बोल सकते जितना तुम लोग पनिशमेंट देते हैं, तो सोच लो ना बाबा
कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आपके साथ होगा।
तो ये सब हत्यारे है तो उनको तो सजा मिलती है, उनके आत्मा को पीड़ा मिलती है और वो पीड़ा बाद में तब्दील होती है अगले जन्म में नहीं होगी। तो जब तक तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं तब तक
वो चीज
नहीं होगी और उसके बाद आएगी
उसके एक बाद, साथ हाँ, कि वो जब, पर वो जब आएगी ना तब तोड़ेगी तुमको पूरी तरीके से, जैसे कि ये सीरियल किलर करते है, क्या उसको ईश्वर छोड़ देगा, वो चीज गलत कर रहे है। ये हम पढ़ने की बात करें उसमें हमने भगवान को बीच में, पर ये थोड़ी सी जरूरी थी ताकि लोगों को पता चले कि किसी को भी मारना गलत बात है।
नहीं, एक चीज होती है ना कि अभी कैसे होता है कि हम कभी कभी बात करते इतना डार्क बात कर लिया तो भगवान ने कंट्रोल ले लिया कि भाई अभी ये थोड़ा बात कर लो,
तो ये
समझ जाए
कि लोग समझ जाए कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, इसीलिए ये चीज बोलनी पड़ती है कि भगवान ने मना किया हुआ है। तो अगर तुम किसी भी भगवान में मानते हो तो ये चीज गलत हर धर्म में, कि बेगुनाह को मारना गलत बात है, नहीं मारना चाहिए। तो अब थोड़ा हॉरर की तरफ चलते हैं। मैंने काफी सारे, अब मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूँ अपने चैनल पे इस बारे में, और ऐसे ऐसे सीरियल किलर डालने वाला हूँ मैं, पूरा ओपन रहेगा, जो भी उन्होंने करा मैं पूरा वीडियो प्रॉपर डिटेल में डालूंगा उस पे, और मैं बोलने में थोड़ा फ्लमिंग करता हूँ, पर वो मैं ट्राई करूंगा कि लोगों को अच्छे से अच्छा स्टोरी टेलिंग में बता सकूं कि ऐसे, और ऐसे सीरियल किलर हो गए शायद जिन्होंने किसी ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे मेरे पास अभी 32 सीरियल किलर के नाम है, जिसको मैंने पढ़, मैं खुद जब मैंने रिसर्च किया तब मैंने तो ये नाम कभी सुने ही नहीं है। मैंने सुना था टेड बंडी, फिर ये पेड्रो लोपेज, फिर जॉन वेन गेसी, फिर ये बाबा यागा का मैंने सुना हुआ था, फिर ये साइनाड अपना इंडिया में था जो मोहन, उसका सुना था, शंकर रिक्शा वाला था उसका सुना था, फिर ये प्रेडेटर, जो प्रेडेटर आई थी सीरीज, बिल्ली वाला जो सर काट के रख देता था, उसका पता था, ये फिर ये बच्चे का पता था, तो काफी ऐसा तो पता था, पर मैंने जब रिसर्च किया कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा है, हमारे भारत में काफी कम है, क्योंकि हमारे धर्म की वजह से, उसकी वजह से काफी, हमारे इंडिया में भी अभी 1780 तो सीरियल किलर अभी भी एक्टिव है इंडिया में, पर वो पकड़े नहीं गए, पर एक्टिव तो है,
एक्टिव है मतलब खून कर रहे हैं,
हाँ अभी भी है और वो कर रहे हैं, पर वो ना फेम नहीं चाहते, काफी लोग फेम चाहते हैं कि हमारा नाम ऊपर आए, जैसे कि टेड बंडी था, उसको फेम चाहिए था और उसको फेम मिला भी था, और ऐसे लोगों को फेम मिलता भी है. जैसे कि एक मूवी आई थी, शायद आपको पता हो, चैलेंज करते हैं वो लोग पुलिस वालों को. जैसे कि ये दिल्ली वाला कर रहा था पुलिस को मुंडिया भेज के कि तुम्हारा तुम्हारे बाप को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, तुम्हारा चीजा हूँ. वो सिर्फ फेम पाने के लिए वो चीज कर रहा था. उसको फेम चाहिए था उस चीज से. तो काफी ना वो उसी की वजह से कर देते. और अभी जो नहीं चल पकड़े नहीं गए और वो अभी भी एक्टिव तो है ही, 17 से 80 अभी तक है ही एक्टिव. ऑलरेडी काम वो अपना धीरे धीरे कर ही रहे. लोगों की लाशें भी कई बार मिलती है जिसको बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया हुआ रहता है.
बट ऐसा इंडिया में ऐसा कौन सा सीरियल किलर है जो सबसे एक्टिव है?
एक्टिव है तो अभी तो मैं कहूँ ना तो जो सबसे ज्यादा तो ये पत्थर वाला है,
स्टोन मैन किलर.
वो ना एक नहीं है, स्टोन मैन किलर इंडिया में बहुत सारे हैं क्योंकि वो ना आसान है उनके वजह से.
बट मुझे ये बता कि वो सेम आदमी है जो 2019 में
नहीं
था कि ये अलग है?
अलग है, ये कॉपी मारते हैं उसकी स्टाइल. काफी सीरियल किलर ऐसा करते हैं कि दूसरा जो सीरियल किलर वो ऊपर वाला ऊपर रहा होगा तो उससे कम्पीट करते हैं कि इसने 50 लोगों को मारा तो मैं 100 लोगों को मारूंगा. उसी तरीके से ये सिर्फ 50 को मार सका है, मैं 100 लोगों को मारूंगा. तीसरा आएगा वो सेम टेक्टिक्स अपनाएगा पर वो उससे ज्यादा टारगेट रखेगा. वो सिर्फ अपना टारगेट चेंज करते है. जो मारने का तरीका होता है वो काफी सीरियल किलर सेम रखते है. जैसे कि काटने का तरीका दिल्ली वाला काटता था, फिर ये रशिया वाली काट देती थी बाबा यागा. वैसे ही काफी सीरियल किलर है जो लोग.
कौन सा वो अपना श्रद्धा केस हुआ था वो उसका
बात? नहीं नहीं वो नहीं, ये तलवार वाला ना. नहीं वो नहीं, ये तो ये जो दिल्ली में उसका प्रेडिटर ऑफ दिल्ली आया था और जो तिहाड़ जेल के सामने सर रख जाता था.
अच्छा, प्रेडिटर
या सर नहीं, वो धड़ रख जाता था, गला काट के वो यमुना जी में डाल देता था. प्रेडिटर ऑफ दिल्ली सर्च करो या बुचर ऑफ दिल्ली, उसका नाम शायद क्या था, उसका नाम मैं भूल गया.
द बुचर ऑफ दिल्ली,
हाँ
वेब सीरीज है इसका.
हाँ उसका उसका नाम मैं भूल गया.
इसको पकड़ा?
हाँ पकड़ा गया ना, चंद्रकांत झा. चंद्रकांत झा ने वो बेसिकली बिहार से था और उसने क्यों मार दिया इतने लोगों को कि वो उस लड़ाई हुई थी उसकी शायद किसी से और वो जेल में चला गया था, उसकी वजह से उसके ऊपर केस हुआ था. और तिहाड़ के कांस्टेबल ने किसी ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की होगी पुलिस वाले ने, तो उसका गुस्सा उतारने के लिए इसने लोगों पुलिस वालों को चिढ़ाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तुमने मेरे साथ गलत किया था ना तो उसकी वजह से मैंने ये चीज की, सिर्फ बदतमीजी की वजह से. क्या ऐसा कोई इंसान कर सकता है?
2006 टू 2007 में उसने काम शुरू किया था.
हाँ वो जो बाहर से आते थे, जैसे कि बिहार से कोई लड़का आता है वो अपने साथ रखता था, वो नया नया है उसको घर चाहिए तो बोल देता कोई नहीं भाड़ा मत देना तू मेरे साथ रह जा. फिर वो धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाता था,
मैनिपुलेट कर.
हाँ फिर उसको ना पसंद कुछ कब नहीं आता था कि उसको कभी कोई मना कर दे, वो वहां से वो ट्रिगर हो जाता था कि एक जो उसने सबसे पहले जब मारा था ना उसने, तब उसने उस लड़के ने ना थोड़े पैसे ले लिए होंगे इसकी जेब से और उसको ये पता चीज चल गई. पर ये सिर्फ बहाना था उसके लिए, ये इसीलिए सामने रखता था कि ये चीज ये गलती करे और उसकी वजह से मैं उसको
मार दू. आई स्वेर, मतलब पूरा
प्लान करता था वो. इसी इंसान उसी तरफ मैनिपुलेशन करके वो उसी तरफ ले जाता था कि वो चीज वो इंसान गलती करे, जैसे ही वो गलती करेगा काम खलास.
मतलब वो बोलते ना कि बीज भी खुद रोए और पेड़ भी उगे और पेड़ भी काटे,
वो ऐसा करता था. तो वो जब वो इंसान की गर्दन काट के ना यमुना जी में फेंक देता था और थर्ड है ना उसके टुकड़े कर करके वो पुलिस वाले तिहाड़ के सामने डालता था. तिहाड़ जेल इंडिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है जहाँ की इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है, वहां के गेट नंबर 3 या 4 पे उसने 3-4 बार बॉडी फेंक दी।
बट मेरे को ये नहीं समझा कि अगर वो बॉडी फेंक रहे हैं तो बाहर तो सिक्योरिटी रहती है।
कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि वो कैसे आता था पता है, सुबह वाला जो अखबार वाला बन के आता है, या तो फिर वो फूल वाला बन के आता था। पर वो गलती क्या करता था पता है, उस एक पुलिस वाले ने शायद वैसे ही पकड़ा गया था वो, शायद मुझे पक्का अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि काफी सारे इसमें भरे हुए हैं ऐसे लोग, तो कुछ चीजें भूल जाता हूँ। तो वो सेम इंसान तो सेम ही रहता था, सिर्फ उसकी जॉब्स चेंज करता था वो। अब आप हो, आपके सामने मैं एक दिन फूल लेके आऊ, एक दिन दूध लेके आऊ, तो आपको लगेगा ना कि ये इंसान बिजनेस कर क्या रहा है कि हर रोज अलग अपना बिजनेस दिखा रहा है। महीने पहले देखा था तब ये फूल बेच रहा था, एक महीने बाद देखा तो ये अखबार बेच रहा है, उसके बाद दूध बेचने वाला है। तो ये इंसान कर, तो उसकी वजह से शायद उसका शक गया था पुलिस वाले को कि ये इंसान में कुछ गड़बड़ है, तो उसकी वजह से वो पकड़ा गया था। और वो शायद लास्ट डालने आया था तभी पकड़ा गया था, कुछ ऐसा ही था उसका, मुझे पक्का मालूम नहीं है, अगर मैं रॉन्ग हूं तो लोग बता ही देंगे, पर मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे पक्का वो याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ हुआ था उसके। पर वो करता था ऐसा। पर आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक कांस्टेबल की भूल की वजह से उसने इतने लोगों को मार दिया होगा?
नहीं, वो तो ट्रिगर पॉइंट था, वो ब्रेकिंग पॉइंट था।
हाँ,
उससे पहले की बैक स्टोरी में तो पता नहीं है।
बैक स्टोरी में तो कैसा था कि बहुत अच्छे सीधे साधे परिवार से था, और बिहार का था वो रहने वाला, और इतना खराब उसका बचपन भी नहीं रहा है। और उसकी शादी में शायद कुछ प्रॉब्लम थी शादी के टाइम पे, उसमें
बीवी को मारा था।
बीवी को मारता नहीं था, पर उसमें कुछ उस दोनों को बनती नहीं थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, और उसको छोड़ के चली गई थी, ऐसा कुछ है। पूरा स्टोरी तो भी मुझे याद नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि उसने कैसे लोगों को मारा है, उसे उसका पूरा स्टोरी तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है पूरा, क्योंकि याद नहीं रहता, क्योंकि इतने सारे अभी मैं लिखने में ही हूँ कि किस किस लोगों को मुझे अभी वीडियोस बनानी है मुझे।
तो बुक भी लिख सकता है,
मेरे पास डायरी है।
मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर तू बुक पब्लिश करेगा तो बहुत चलेगा।
मैं अभी तो इसमें करने का सोच रहा हूँ, अगर इतना अच्छा राइटिंग तो मेरा है नहीं।
गोस्ट राइटर थी ना, मतलब अगर किसी को तू रख सकता है गोस्ट राइटर करके, तो उसको बोलेगा कि तेरे को मैं, तू लिख, अपना ही आदमी ढूंढने का कोई अच्छा, मतलब रिलेटिव, उसको बोलेगा कि
तो वो तो उसमें तो
प्रॉफिट का इतना परसेंटेज में तेरे को दे दूंगा, ऐसा बोल के पब्लिश कर।
उसमें तो क्या है ना कि वो उतना तो मैंने अभी सोचा नहीं है,
मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं। बट कमिंग बैक ऑन द पॉइंट, उसके वाइफ के साथ उसका बनता था नहीं बनता था उसका तो श्योर नहीं हम लोग,
वो पूरा स्टोरी अभी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं।
पर उसके वाइफ का भी मर्डर किया था इसने?
नहीं, उसके बच्चे भी थे, उसकी बेटी की शादी भी उसने करवाई थी, बहुत अच्छी तरीके से अपना परिवार भी वो चलाता था, पर उस साइड में ये उसकी अलग हसल चल रही थी।
ये हसल भाई
खतरनाक हसल थी ये, और
इंजर
ऐसे ही काफी है। ये भी एक और ये हुआ था ना कुछ युगांडा वाला, कुछ लड़की हनीमून वाला था, उस पे भी मैं अभी पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, मैंने वीडियो देखा था SRPA का, तो उसमें वो देखा था, और वो भी काफी डार्क है। वो मुझे याद तो पूरा नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा ही देखा था, उसके बाद मैं वापस अपने काम में चला गया था।
नहीं बट लाइक आज का पॉडकास्ट बहुत अलग तरीके से हो गया है, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कि दोनों साइड से कन्वर्सेशन होती है, बिकॉज मोस्टली मैं मेरे पॉडकास्ट में मेरे को ज्यादा बात करने को नहीं मिल रहा, मैं क्यूरियस था, तू बता रहा था, मैं क्यूरियसिटी में मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो कन्वर्सेशन एक नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट हो गई थी,
उसी में मजा आता है। और मैं जब वीडियो डालता हूँ ना, तो मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप मुझे सजेशन दो। मैंने 3 वीडियो सभी होस्ट पे डाल दिए, तो मैंने दूसरे तीसरे वीडियो में मैंने बोला लोगों को कि मैं, अगर कुछ आपको लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, या मुझसे कुछ गलती हो रही, तो आप मुझे सजेशन दो। देखो इंसान सीखने पे बैठे ना तो पूरी जिंदगी पर चली जाए, और कोई परफेक्ट नहीं होता, सब सीखते सीखते ही आगे बढ़ते हैं, और मुझे भी ऐसे ही बढ़ना है। पर मुझे ना जो भी मेरे सब्सक्राइबर आएंगे, अभी तो कुछ है नहीं, पर अच्छे जब आएंगे तो मुझे उन्हें ना परिवार के जैसे रखना है कि वो मेरे साथ पूरी तरीके से कनेक्ट कर सके
कम्युनिटी
ये बंदा। हाँ कि ये बंदा अपने को पूछता है कि क्या चाहिए, क्या मैं गलती कर रहा हूँ।
मेरा भी वही ट्राई रहता है, बट कुछ कुछ लोग है ना, एक एक आदमी है वो राघव करके, वो अभी ये पॉडकास्ट भी देखेगा मेरे को मालूम है, उसका नाम ले रहा है, उसको फेमस कर रहे हैं मैं, बट वो उसको मैंने कमेंट्स बैन करके रखा। वो कुत्ता कमीना, उसको क्या समझता है खुद को, मेरे को बोलता है कि मेरे दिमाग में गए
क्या, क्या बोलता है
तो खुद के लिए पॉडकास्ट। हाँ बनाता है मैं खुद के लिए पॉडकास्ट भाई, बनाता है हक से,
मजा आता है।
मैं बोलता हूँ मैं, मेरा एक एक बात है कि मैं लोगों के लिए नहीं बनाता है, मैं खुद के लिए बना रहा है और लोग देख रहे, लोग फ्री में देख रहे, मैं पैसे भी नहीं ले रहे
लोग से ना, कहाँ पैसे लग रहे हैं लोगों को, अगर मजा
आ रहा है मेहनत डाल के तुम लोग को दिखा रहे, कुछ देखो और चले जाओ ना, तुम लोग को क्या गाली देने का, तुम लोग को हेट क्यों फैलाने का, नहीं देखने का मत देखो,
स्किप मार दो, चले जाओ।
एग्जैक्टली, तो वो कुत्ता कमीना, अगर वो अगर तू देख रहा है ना पॉडकास्ट, तो याद रख भाई तेरे को है ना इतने लोगों ने गाली दी है ना, इतने लोगों ने गाली दी है ना कि भाई तेरे को श्राप लग गया है, माफ कर दे, बट भाई सॉरी।
देखो मैं ना जब वीडियो हंसते मुझ पे भी है लोग, ठीक है कि क्या कर रहा है तू, तेरे से थोड़ी ये चीज, और मेरे को काफी लोगों ने, मैंने कमेंट डिलीट मार दिए उन लोगों के, पर उन्होंने बोला कि क्या तेरे सर पे बंदूक रख के तू बात कर रहा है।
नहीं आदत नहीं रहती ना कैमरा फेस करके बात,
मैंने किया नहीं था, पर मैंने वो जो उस भाई ने किया ना, मैंने वो एज अ सजेशन लिया कि नहीं ये भाई, मैंने जब मैंने अपना वीडियो देखा ना, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई धमका के बिठाया और मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ।
नहीं बट वो चीज
ठीक है,
ठीक है,
मुझे ऐसा बोला गया कि ये वीडियो बना के करेगा क्या तू, कि ट्रू क्राइम स्टोरी पे
रियली अप्रिशिएट ब्रो, तो इतना गुजरात से सूरत से भाई बस पकड़ के इधर आया मुंबई में, एंड तेरा इतना नॉलेज थे कि मैं तो फैन हो गया भाई। एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग कि इसका सेकंड पार्ट बनने के हाई चांसेस है, अगर ये पॉडकास्ट 100,000 के पार जाता है, हम लोग सेकंड पार्ट बनाते हैं और वील मेक अ लिस्ट की इंटरेस्टिंग स्टोरीज उसमें डाल के वो किस्सों के बारे में बात करेंगे जो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है,
और लोगों ने जो नहीं सुने होंगे वो सुनाएगी।
हाँ एग्जैक्टली, और अगर लोगों को चाहिए कि हम लोग सीरीज बनाए साथ में बैठ के, तो हम लोग सीरीज भी बना सकते हैं,
बना सकते हैं, जरूर
10 एपिसोड 15 एपिसोड की सीरीज
जो जितने भी चाहिए, मैं रेडी हूँ,
मैं भी रेडी हूँ गाइस, तुम लोग पे,
मेरे तो ये फेवरेट मेरे लिए, अगर कोई सीरियल किलर पे बोल देगा ना, मैं उसके साथ पूरी रात बात कर सकता हूँ इस चीज पे, क्योंकि मुझे ना जब से मैं पढ़ाई कर रहा था ना साइकोलॉजी से, कि तब से ही मुझे ये चीज बहुत पसंद आती थी।
मैं आई सजेस्ट, जैसे बोला तू एग्जाम दी थी पुलिस की, और प्राइवेट डिटेक्टिव भी बन जा सकता है, तो आराम से ये बन सकता है।
अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 100,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो अभी तो पहले तो मैं ना जो हॉरर जगह होती है वहां पे, जैसे कि वो पहले जाते थे वो भाई गौरव तिवारी की, क्या नाम था उनका जो,
हाँ
गौरव तिवारी थे ना, वैसे ही मुझे जाना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यूएसए जाके पूरे इक्विपमेंट लेके आऊ।
जो सर्वजीत है ना, हम लोग के इधर, मेरे इधर आया था सर्वजीत मोहंती, वो उनका पॉडकास्ट भी देख लेना, वो उन लोग की टीम है पेर्स करके,
वो लंबे बाल वाला,
लंबे बाल वाला,
हाँ, देखा था मैंने, हाँ।
तो उनकी टीम है, तो
मैं देखता हूँ पॉडकास्ट, तो मैंने काफी, ये जो रामायण वाला था ना, हाँ। वो तो मैंने पूरा देखा,
वो बहुत सुंदर था,
बहुत मस्त,
लोगों ने देखा नहीं है यार,
वो लोग देखो वो पॉडकास्ट देखो, तुमको काफी चीजें जानने को मिलेगी, काफी चीजें मुझे भी जानने मिली कि यार ऐसा भी था, हनुमान जी की शादी हुई वो मुझे नहीं पता था, इतना बड़ा मैं भक्त हूँ फिर भी।
एक एक बात तूने की रहेगी कि पॉडकास्ट के बाद तूने कंपेयर किया रहेगा रिसर्च पे,
हाँ,
और वो सच निकला रहेगा,
वो सच था।
मैंने एक कमेंट पढ़ा कि उसने कि तुम पागल बना रहे हो लोगों को, बोला अरे तुम लोग रिसर्च करो,
मैंने देखा था, फिर मैंने मेरी मम्मी को भी पूछा कि हनुमान जी की शादी हुई थी, आप तो बोल रहे थे ब्रह्मचारी थे, पर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने की थी। तो मैंने कहा ये चीज मुझे अब नहीं, पॉडकास्ट की वजह से मुझे ये चीज पता चली। तो अगर लोग ना ये लड़कियों वाली काफी देखेंगे, पर अगर जानने वाली है तो वो भी देखो, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब देखना चाहिए, सबसे आपको कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा लोगों की बातों से, चाहे वो लड़की के हो या किसी और चीज पे हो, या हॉरर पे हो, सीरियल किलर पे हो, या भगवान पे हो, कुछ ना कुछ तो आप सीखोगे ही सीखोगे उसमें से। पर अगर लोगों को पसंद आएगा तो फाइनली पार्ट टू, और अगर सीरीज बोलेंगे तो सीरीज बना देंगे हम।
ठीक है गाइस, तो आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बहुत है, हम लोग ने 1 hour 32 minutes का पॉडकास्ट ऑलरेडी कर दिया, 33 minutes का पॉडकास्ट कर दिया। अगर तुम लोगों को पसंद है, तुम लोगों को पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का तो करो, जबरदस्ती नहीं है, बिकॉज प्यार जुड़ता है कम्युनिटी से, और कम्युनिटी जैसे भाई ने बोला कि अपने पन रहते तभी कर सकते हो, तो भाई अगर जबरदस्ती नहीं करने का तो करो, बिंदास करो। अगर तुम लोग Spotify पे सुन रहे हो तो 5-star रेटिंग देने का है तो दे दो प्लीज, बिकॉज उससे हम लोग का पॉडकास्ट बहुत लोगों के पास आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉडकास्ट जल्दी में ग्रो करे, एंड मेरा ये गोल भी है कि अगले साल तक मेरा 1 million हो जाए, एंड बिकॉज मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं कि मैं पॉडकास्ट करूँ, पॉडकास्ट के साथ मैं लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ, लोगों के साथ जुड़ना भी चाहता हूँ, लोगों से काम भी करना चाहता हूँ, एनजीओ की तरह, बट नॉट एग्जैक्टली एनजीओ एनजीओ, बट समथिंग विच इज मोर हेल्पफुल बोल सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू डू दैट, एंड अगर तुम लोग को मेंबरशिप लेने का है तो 89 rupees से चालू होता है, और 49 rupees से, अपने 40 rupees से इंस्टाग्राम पे चालू होता है। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आई स्टार्ट पोस्टिंग वीडियोज, रील्स एंड ब्लॉग्स पर्सनल और प्राइवेट में, तो उससे भी आपको मजा आएगा एंड यू विल हैव फन। तो अगर पसंद आए ये एपिसोड तो मेक श्योर दैट फॉलो सर यहाँ पे जो बैठे इतने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो खोल के। भाई मजा आया यार, इतना मजा आया मेरे को ना।
अगर लोगों को पसंद आएगा ना तो मैं फिर सिर्फ अपने चैनल पे वही डालूंगा।
हाँ तो वो तो है, सी आई मैं तेरे को ये भी लिख के देता हूँ कि 5 साल में मैं लिख के देता है तेरे को, 5 साल में तू यही फील्ड में बड़ा आदमी बन के ही रहेगा, बिकॉज तू जिद्दी है। एक चीज है, तू जिद्दी है,
जिद्दी तो हूं,
और तू करेगा क्योंकि तेरे को पसंद है, और जो पसंद है वो करने में शर्म कैसी बिंदास। तो करो, और ये भाई सेकंड पार्ट चाहिए तो तुम लोग कमेंट डाउन करो। अगर तुम लोग के 100 comments आ गए, 100 comments भाई, 100 comments और 100k व्यूज दोनों में से एक जो भी जल्दी हो जाता है हो गया, सेकंड पार्ट फट से आ जाएगा, 2-3 weeks में आ जाएगा,
मैं वापस आ जाऊंगा।
हाँ भाई,
जैसे अभी आया वैसे ही वापस
आ जाएगी भाई। And that's it for today. Thank you for watching, guys. Bye bye. Shabakai. Take care. Whatever it is. And peace out. Ram Ram. और एक चीज जाने से पहले गाइज, ये भाई है जो हमारे युवराज भाई जो है, उनका चैनल का लिंक और डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स दिया गया है। कोलैबोरेशन में एक वीडियो जाएगा, टैग्स में देखो, कोलैबोरेशन में देखो, यू कैन फाइंड दिस चैनल पेज इंस्टाग्राम जो भी है, आप देख के उनसे बात कर सकते हो, उनसे संपर्क कर सकते हो, उनके आपके पास कोई स्टोरीज रहेगी तो उनको भेज सकते हो, ईमेल एड्रेस पे भी भेज सकते हो उनके पास, एंड उनको चाहिए तो डीएम भी कर सकते हो।
मैं जवाब सबके देता हूँ तुरंत,
जल्दी अर्ली डेज में हम लोग सबको जवाब देते हैं, बाद में वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, मान लिया, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट अ क्रिमिनल पॉडकास्टर और क्रिमिनल कंटेंट क्रिएटर बोल सकते हैं, जो क्राइम साइड डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वैसे कोई उभरता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट यस, अगेन बाय बाय, शमा गेट, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज, एंड पीस आउट। राम राम।